पवनेश्वरी वृषभानु सुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये प्रणमामि हरिप्रिये प्रणमामि हरिप्रिये वंशाकल्पतरुभ्यश्च कृपासिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः वैष्णवेभ्यो नमो नमः हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा। तो आप सभी भक्तों का श्री श्री राधाष्टमी के इस महामहोत्सव में सबका स्वागत है और हार्दिक शुभेच्छाएं हार्दिक शुभकामनाएं श्री श्री राधा रानी के जन्मदिन के उपलक्ष में। और सबसे पहले हम श्री गुरुदेव का हार्दिक धन्यवाद करेंगे क्योंकि गुरुदेव परम पूज्य राधानाथ स्वामी महाराज की कृपा से ही श्रीमती राधा रानी और उनके पवित्र धाम श्री बरसाना इसका परिचय हुआ, वहां के परम श्रेष्ठ ब्रजवासियों का परिचय हुआ और कुछ कुछ इस धाम के विषय में परिचय हुआ। इसलिए ऐसे श्री गुरुदेव को बारंबार प्रणाम है जिनकी ही कृपा से ये दिव्य तत्वों का प्रकाश होता है। उसके पश्चात हम हमारे अंतर्राष्ट्रीय कृष्ण भावनामृत संघ के जो आचार्य हैं जिन्होंने राधा रानी के विषय में लेखन किया है और जो इसमें बहुत ज्यादा ज्ञान अनुभूति रखते हैं, ऐसे सभी सन्यासियों का हम हार्दिक वंदन करते हैं, विशेष रूप से परम पूज्य शिवराम स्वामी महाराज से, जयपताका स्वामी महाराज से, भक्ति पुरुषोत्तम स्वामी महाराज से, राधा गोविंद देव गोविंद दास स्वामी महाराज से, जिन्होंने इस राधा तत्व के विषय में बहुत सारा प्रकाश किया है अपने वक्तव्य से और अपने ग्रंथों से जन सामान्य को भक्तों को इसमें अनुभूति दिलाई है। उसके साथ में हम नरोत्तम दास ठाकुर जी को धन्यवाद करते हैं जिन्होंने राधा कृष्ण के विषय में बहुत ही सुंदर साक्षात्कार पूर्ण अनुभूति पूर्ण भजन लिखे हैं और श्रीमती राधा रानी गोपियों के विषय में उनकी भावनाओं के विषय में बहुत सारा प्रकाश किया है। फिर हम षड गोस्वामी प्रभुतियों का धन्यवाद करते हैं और उनको हार्दिक वंदन करते हैं क्योंकि नरोत्तम दास ठाकुर कहते हैं, रूप रघुनाथ पदे होई बे आकृति कबे हमें भुजा बोसे जुगल अभृति। उनका ये कहना है, उनका ये साक्षात्कार है कि ये वृंदावन का रस जो है, ये गोपियों का भाव, गोपियों का राधा रानी का कृष्ण के साथ संबंध, आदान प्रदान, प्रेम का भाव, प्रेम लीलाएं, ये जो रहस्यमय वस्तुएं हैं उनका प्रकाश केवल रूप रघुनाथ ही कर सकते हैं। रूप रघुनाथ पदे राहो मोरा आशा प्रार्थना करो हे सदा नरोत्तम दास। राधा कृष्ण के और राधा गोपियों के कृष्ण के साथ में जो रहस्यमय प्रेममय संबंध है उसका प्रकाश केवल आप ही कर सकते हो हे रूप गोस्वामी जी, हे रघुनाथ दास गोस्वामी जी, हे षड गोस्वामी प्रभुगण की। और उसके पश्चात हम श्री गौरांग महाप्रभु और पंच तत्व का भी सबको प्रणाम करते हैं, गदाधर पंडित जी को प्रणाम करते हैं जो स्वयं राधा रानी के अवतार हैं और श्रीमद् भागवत का उन्होंने बहुत दिव्य रूप से प्रकाश किया था। यहाँ तक कि श्री चैतन्य महाप्रभु भी उनके श्रीमद् भागवत के वर्णन से बहुत प्रभावित होकर नृत्य किया करते थे टोटा गोपीनाथ के मंदिर में। और स्वयं राधा रानी गदाधर पंडित के रूप में आई है, उनको हमारा दंडवत प्रणाम है। श्री गौरांग प्रभु को शत शत बार प्रणाम है। यदि गौर ना होई तो बेकी होई तो कैमोने धोरी ताम धे राधार महिमा प्रेमो रसो सीमा जगतो जाना तो के राधार महिमा रस सीमा जगते जाना तो के। अगर गौरांग महाप्रभु नहीं होते तब क्या होता हम सब लोगों का, हम पर क्या बीतती, कैसे हम धरती पर जी पाते। ये जो राधा की अनन्य महिमा है, अपार महिमा है, असीम अमर्याद महिमा है, ये प्रेम रस की सीमा है और ये सीमा भी असीम है। ये प्रेम रस नित्य वृद्धिंगत होने वाला है, जीव के आध्यात्मिक पोषण करने वाला है। किसने किया होता ये सब कुछ अगर महाप्रभु नहीं आते, अगर महाप्रभु ने ये चेष्टा न की होती, ये इच्छा न की होती कि मैं ये खुद जानूं राधा तत्व की महिमा और मैं ये अवतार लूं इसको अनुभव करने के लिए। और उन्होंने केवल अनुभव नहीं किया, उन्होंने इसका प्रकाश भी किया। मधुर वृंदा विपिन माधुरी प्रवेश चातुरी सार ब्रज युवती भावेर भक्ति सकत हुई तिकार। गाओ गाओ पुनः गौरांगे रघुना सरल कोरिया मौन। मन को सरल करके हमको श्री गौरांग महाप्रभु को बार बार उनको पुकारना चाहिए। ए भाव सागर ए मौन दयाल ना देखिए एक जोन। उनके जैसा परम दयालु परम कृपालु इस पूरे सृजन में कोई नहीं है। इस प्रकार से श्रीमद् भगवद गीता जो है वो हमें तत्व सिखाती है और श्रीमद् भगवद गीता हमें शरणागति की स्थिति पर पहुंचाती है अगर हम श्रीमद् भगवद गीता का पूर्णतः पालन करते हैं। श्रीमद् भागवत शरणागति से आरंभ होता है और प्रेम तक उसकी यात्रा होती है। शरणागति से लेकर प्रेम तक की यात्रा श्रीमद् भागवत है। कई प्रकार से इसको हम देख सकते हैं, लेकिन जो प्रेम करने वाले शरणागत भक्त हैं उनका लीलाओं का वर्णन श्रीमद् भागवत में है। और प्रेम तत्व तक पहुंचने के बाद, प्रेम तत्व को साक्षात्कार करने के बाद जितने भी भक्त हैं ऐसे उन सबकी प्रेममयी प्रेम संपृक्त लीलाएं हमें चैतन्य चरितामृत में दिखाई पड़ती है। तो राधा रानी का तत्व सिद्धांत, राधा रानी का भाव हम भागवत से समझते हैं और इस भाव को जो समझ चुके हैं ऐसे भक्तों की लीलाएं, उनका व्यवहार, उनके आदान प्रदान, उनका चरित्र हमें श्री चैतन्य चरितामृत में प्राप्त होता है। और जो राधा रानी की जो भाव की चरम स्थिति है, आश्लिष्यवा पादरताम पिनष्टु माम अदर्शनम मर्महताम करो तु वा यथा तथा वा वृदधा तुलं पटो मत प्राणनाथस्तु स एव नापरः मत प्राणनाथस्तु स एव नापरः मत प्राणनाथस्तु स एव नापरः। चाहे जो कुछ भी हो जाए जीवन में, आप हमें गले लगाएं, आप हमें ठुकरा दें, आप हमें कुचल दें, आप अपना बना लें या पराया कर दें, इस हर स्थिति में अपनाए जाने की या ठुकराए जाने की, विदग्ध अवस्था में या संयोग की अवस्था में, हम सब हमेशा मत प्राण नाथस्तु स एव ना परहा आपके ही दास बने रहेंगे। आप ही हमारे आराध्य प्राणेश्वर बने रहेंगे, वंदनीय पूजनीय बने रहेंगे, सर्वस्व बने रहेंगे। ये जो परमोच्च निरपेक्ष निस्वार्थ भावना है, पूर्ण शरणागति और पूर्ण प्रेममय भावना जो है, ये श्री चैतन्य महाप्रभु ने चरम सीमा के रूप में श्री चैतन्य चरितामृत में प्रकाशित की है। तो इसलिए श्री चैतन्य महाप्रभु और उनके सारे पार्षदों का जो अनगिनत है उनके सबका नाम गिनाना मुमकिन नहीं है, लेकिन गौर भक्त वृंद ऐसे कहकर हम सबको वंदन करते हैं, क्योंकि कृष्णदास कविराज गोस्वामी जो चैतन्य महाप्रभु के पार्षद हैं, मंजरी के अवतार हैं, वो उन्होंने ये सब ये प्रेममय लीलाओं का चरम सीमा के ऊपर जो प्रेममय लीलाएं हैं उनका सब प्रकाश किया है। तो इनको धन्यवाद दिए बिना हम राधा रानी की कथा नहीं कह सकते हैं, या राधा रानी की कृपा नहीं प्राप्त कर सकते हैं, राधा रानी के उत्सव जन्मोत्सव को ठीक से हम इसकी महिमा को नहीं समझ सकते हैं, क्योंकि संत जो होते हैं वही उनके ही हृदय में इस प्रकार के अनुभूतियां होती हैं, और वही अब कृपा करके उसका भंडार हमारे लिए हमारी भाषा में हमारी समझ के अनुसार वो प्रकट कर देते हैं। इसलिए सब इन सब लोगों को हृदय से त्रिवार दंडवत प्रणाम है, वंदन है, उत्कट प्रणाम है, उत्कट याचना है, उत्कट प्रेम कृपा याचना है। इसी के साथ राधा रानी और कृष्ण भगवान के जो प्रेममयी संबंध हैं उनके विषय में दो शब्द कहेंगे। आमतौर पे राधा रानी और कृष्ण भगवान और गोपियों की जो लीलाएं हैं वो लोग सुनते हैं क्योंकि सुनने को बहुत अच्छा लगता है और लगता है कि यही भाव है, ये भाव ये साधना में नहीं आता है, ये सोलह माला जप करने में नहीं आता है। सोलह माला जप करने में नींद आती है, झपकी आती है, मन में कई प्रकार के विचार आते हैं, अरुचि उत्पन्न हो जाती है, जाड्य यानी आलस्य उत्पन्न होता है, औदासीन्य यानी कि नो इंटरेस्ट, इस प्रकार की भावना उत्पन्न होती है। जब करते समय पचासों विचार मन में आते हैं, बहुत महत्वपूर्ण काम याद आते हैं, तो उसमें भाव की अनुभूति नहीं होती है, लेकिन जब राधा कृष्ण की लीलाएं सुनते हैं तो बड़ा हृदय भावुक हो जाता है। लेकिन ऐसी भावुकता जो है वो बहुत क्षणभंगुर होती है, और ऐसी भावुकता भी जो है वो सुनने वाले को भटका देती है। अगर उसका जो फाउंडेशन है वो अगर मजबूत नहीं होगा, उसकी तैयारी अगर ठीक से नहीं होगी, तो ये सब अनुभूतियां हमारी आध्यात्मिक प्रगति को भ्रष्ट कर सकती है, हमारे आध्यात्मिक मार्ग में हमको मार्ग भ्रष्ट कर सकते हैं। इसलिए समझना बहुत जरूरी है कि जैसे स्कूल के विद्यार्थी को पीएचडी या एमडी या सुपर स्पेशलाइज्ड डॉक्टर का जो ज्ञान है उसका नकल नहीं करना चाहिए या जानने का प्रयास नहीं करना चाहिए, क्योंकि उसकी भी एक योग्यता निश्चित की गई है कि फलाना फलाना अगर योग्यता हम ले लेते हैं, 12th पास कर लेते हैं, फिर एमबीबीएस कर लेते हैं, उसके बाद में हम सुपर स्पेशलाइजेशन के लिए प्रवेश ले सकते हैं, उसके बिना अगर हमारी योग्यता नहीं है, उतने मार्क हमारे अंक नहीं आए हैं, तो हमें उसमें प्रवेश नहीं मिलता है। कितना भी चाहने पर, कितना भी इच्छा होने पर, कितना भी अच्छा लगने पर, रुचि होने पर भी योग्यता सबसे प्रथम है, रुचि बाद में है। हमारे रूप गोस्वामी के द्वारा दिए गए जो स्टेप्स हैं भक्ति के, उसमें भी रुचि बहुत आगे आती है। सबसे पहले श्रद्धा आती है, उसके बाद में साधु संग आता है, उसके बाद में भजन क्रिया। इस सेशन पर हम लोग बहुत रुकते हैं लंबे समय के लिए, उसके बाद में अनर्थ निवृत्ति होती है, उसके बाद में श्रद्धा का रूपांतर निष्ठा में होता है, उसके बाद में छठे अंग के रूप में रुचि उत्पन्न होती है, उसके बाद में आसक्ति उत्पन्न होती है, उसके बाद में भाव उत्पन्न होता है, और ये सब बहुत ही ऊंची ऊंची बातें हैं। तो कमजोर प्लेटफॉर्म के ऊपर खड़े होकर हम सर्वोच्च वस्तु को प्राप्त नहीं कर सकते। बहुत ऊंचे पेड़ पर लगे हुए, सबसे ऊंची डाली पर लगा हुआ सबसे मीठा फल हम जमीन पर खड़े होकर उसको नहीं निकाल सकते। उसका एक ही तरीका है, या तो हम लंबे हो जाएं जो बहुत कठिन है, और या तो ऊपर जो पहुंच चुके हैं वो सर्वोच्च डाली पर, वो फल तोड़ें और जो बाकी डालियों पर जो लाइन से लोग खड़े हैं उनके पास उसको ट्रांसफर करें, और फिर वो ट्रांसफर करके जो सबसे नीचे हमारे कद पर खड़े हैं वो उसको ग्रहण करके हमको वैसे के वैसा दे दें। तो ये जो अवरोह मार्ग है, इसको अवरोह मार्ग कहते हैं, कि सभी सर्वोच्च आचार्यों के द्वारा अनुभव करने के पश्चात, वो अनुभव जब भी अपने संप्रदाय में आचार्यों के द्वारा हमारे तक पहुंचता है, बोनाफाइड यानी योग्य तरीके से, योग्य व्यक्ति से, योग्य साक्षात्कारी व्यक्ति से, तब ये अनुभूति हमको हो सकती है। इसलिए प्रीमैच्योरली, हाँ, योग्यता को न प्राप्त किए हुए इन दिव्य चीजों की प्राप्ति की इच्छा करना, ये एक प्रकार से विरोधाभास है, हाँ, आभास है ये। तो इससे हमें बचना चाहिए, और जो भी हमारे आचार्य हमें दे रहे हैं उनके ही द्वारा इन अनुभूतियों को, लीलाओं को समझने का प्रयास करना चाहिए। कुछ 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 लोग कहते हैं, कुछ ब्रजवासी भी ऐसा कहते हैं कि अरे प्रभुपाद जी ने दिया ही क्या है आपको, प्रभुपाद जी ऐसे लोगों से मिले जो नशा करने वाले थे, व्यभिचारी थे, जुआरी थे, मांसाहार करने वाले थे और क्या क्या करते थे, तो क्या उनकी स्थिति थी कि क्या दे पाए वो। लेकिन ये गलत है, मुझे स्वयं ऐसे कहा गया है ब्रजवासियों के द्वारा। तो ये गलत क्यों है? क्योंकि प्रभुपाद जी ने हमें सब कुछ दिया है। हम चैतन्य चरितामृत का अध्ययन करेंगे, श्रीमद् भगवद गीता और भागवतम का अध्ययन करने के पश्चात श्रीमद् चैतन्य चरितामृत का अध्ययन करेंगे, या श्रीमद् चैतन्य चरितामृत को साक्षात्कारी शुद्ध भक्तों के मुख के द्वारा प्रवचन के रूप में सुनेंगे, तो आपको ये सारी जो उच्च उच्च कोटि की लीलाएं हैं और भावनाएं हैं प्रेम में, वो सबकी अनुभूति आपको होगी, क्योंकि वो सब कुछ है। और आगे जाकर अगर आप आचार्यों के भजन पढ़ेंगे, जैसे रघुनाथ नरोत्तम दास ठाकुर हैं, ठाकुर भक्ति विनोद जी हैं, गोविंद घोष, वासु घोष, इनके सारे भजन हैं, अनेक भजन संग्रह हैं हमारे, उसके अंदर सबसे उत्कट भावनाएं प्रकट की गई है। जैसे हम राधा कृष्ण प्राण मोर गाते हैं, जैसे वृंदावन रम्य स्थान गाते हैं, सबसे वृंदावन की जो अंदर की लीलाएं हैं उसके विषय में रघुनाथ नरोत्तम दास जी साक्षात्कार कर रहे हैं, दर्शन कर रहे हैं और उसका वर्णन कर रहे हैं। कोई ऐसे हमको कहते ना, ट को ट, म को म जोड़ के, यमक जोड़कर वो कपोल कल्पित काव्य नहीं बना रहे। जितने भी हमारे आचार्यों, गौड़ी आचार्यों के भजन हैं, वो सभी भजन साक्षात्कार के भजन है, जो उनको दिखाई पड़ रहा है उसका वर्णन है वो। इसमें श्रद्धा होनी चाहिए, और हम इसको नहीं पढ़ते हुए ब्रज में जाकर किसी बाबा को या किसी महान विभूतियों को मिलकर उनके द्वारा कुछ रस प्राप्त करने का प्रयास करते हैं, तो रस तो हासिल नहीं होगा आपको। क्योंकि जैसे एयरलाइन की टिकट खरीदने का भी एक तरीका होता है, इसको बोनाफाइड तरीका कहते हैं, और आपने फर्जी मार्ग से सस्ते में टिकट खरीद, तो एयरलाइंस आपको अंदर नहीं लेगी। उसी तरह से भगवान के विषय में जो साक्षात्कार है, वो बोनाफाइड संप्रदायों के माध्यम से ही हमको प्राप्त करना है। अन्य आचार्यों के संपर्क ना होते हुए केवल उनकी किताबें पढ़कर हम उनके साक्षात्कार नहीं कर सकते हैं। जितनी हमारी योग्यता है और हमारी योग्यता के अनुसार हमारे हमारे आचार्य, हमारे गुरुजन जितना हमको देंगे, उतना ही हम पकड़ सकते हैं, संग्रहित कर सकते हैं, रख सकते हैं लंबे समय के लिए। बाकी सारी जो अनुभूतियां हैं वो आएंगी और उल्टे घड़े पर पानी की तरह बह जाएगी, कभी हमारी अंतरात्मा में वो उसकी अनुभूतियां टिकेंगी नहीं। दोज रियलाइजेशंस विल नॉट स्टे लॉन्ग इन द इनर कोर्स ऑफ आवर सोल एज रियलाइजेशंस। इसलिए थोड़ा चेतावनी का वर्णन बहुत जरूरी है, क्योंकि तो हमारे मन में ना, जैसे योग्यता ना होते हुए कुछ सर्वस्व सर्वोच्च प्राप्त करने की इच्छा है, चमत्कारी रूप में होती है। अक्सर हमारे मन में वो चमत्कार का बहुत लालसा होती है। जब कोई बीमार होता है तो हमको लगता है कोई चमत्कार हो जाए, कोई प्रार्थना की जाए, कोई ऐसा अभिषेक किया जाए, तुरंत कोई हाथ लगाया जाए साधु का किसी का, तो कोई विभूति दे जाए तो तुरंत बीमारी नष्ट हो जाए। हाँ, इसे चमत्कार हमको बहुत अच्छे लगते हैं। नरसिंह भगवान ने ऐसे बहुत चमत्कार किए हैं मायापुर में, लेकिन वो उनकी कृपा है, वो हमारी योग्यता नहीं है। हम उनको डिमांड नहीं कर सकते कि आपने उनको चमत्कार किया, हमको भी, हमारा भी ट्यूमर निकाल दो। नरसिंह भगवान का अभिषेक किया, किसी का ट्यूमर नष्ट हो गया तो हमारा भी कर दो, ऐसे नहीं होता। ये जिनकी योग्यता होती है, जिनकी उतनी श्रद्धा होती है, जिनके उतना भाव होता है, उन्हीं पर ये चमत्कारी कृपा की जाती है। आम जनता को ये चमत्कार का अनुकरण या प्राप्ति नहीं हो सकती है। तो साधारण भक्त को चमत्कार के मार्ग में जाना नहीं चाहिए, क्योंकि तो बहुत लुभावना और भ्रमित करने वाला, भ्रष्ट करने वाला मार्ग है। वो जो बोनाफाइड मार्ग है, राजमार्ग, वो तो साधना का मार्ग है। ठीक से गुरु महाराज ने दी हुई साधना करो, 16 माला का रोज ध्यान से हम लोग जप करना चाहिए, हरे कृष्ण महामंत्र का, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, दिल से पुकार कर जप करना चाहिए। 4 नियमों का सुदृढ़ता से पालन करना चाहिए। वैष्णवों की सेवा करनी चाहिए, भगवान के विग्रहों की पूजा करनी चाहिए, धाम निवास में जाना चाहिए, संतों के संग में, भक्तों के संग में। मुझे अभी भी याद है, 1986 से लेकर आज तक मैं कभी भी वृंदावन में बिना भक्तों के नहीं गया हूं। कभी भी अगर गया भी अकेला हूं तो वहां पर भक्तों के संग रहा हूं, और दूसरी बात, केवल सेवा के लिए गया हूं। मैं ये विशेष रूप से कहना चाहता हूं, गर्व के रूप में नहीं कहना चाहता हूं, लेकिन बताना चाहता हूं कि ब्रज में सेवा के अंदर, यानी सेवा करते हुए, या तो भक्तों के समुदाय के अंदर, गुरु महाराज के द्वारा भेजे गए भक्तों के संग में, इन दो चीजों के बिना ब्रज में जाना बहुत ही खतरनाक है, बहुत ही हानिकारक है दिव्य दृष्टि से। मुझे अभी भी याद है, मेरा मेरा ज्येष्ठ भ्राता, मैंने कई बार कहा था कि हमारे संग चलो, वृंदावन चलो, लेकिन हमारे संग वृंदावन नहीं आए कभी। एक बार अकेले चले गए, अकेले चले गए तो एक छोटे से मंदिर में, वृंदावन में गए, उनको पंडाओं ने घेर लिया, ऐसा वैसा बात करके उसका ऐसा उनको दिमाग घुमा दिया कि जेब में जितने पैसे थे सब खाली कर दिए उन्होंने। और उसके बाद में मेरे भैया ने ऐसा निर्णय लिया कि मैं कभी वृंदावन नहीं जाऊंगा। क्यों? क्योंकि तो हमारे भक्तों के संग में उनको आने का मौका था, वो अकेले चले गए, तो माया देवी वहां बैठी हुई है, जब हमारी तैयारी नहीं होती है ऐसी अवस्था में माया देवी अटैक करती है, फिर वो ऐसे अनुभव मिलते हैं कि दोबारा वो व्यक्ति वृंदावन में कभी जाएगा ही नहीं। बोनाफाइड तरीका मिलने पर भी जाएगा नहीं, ऐसा अनुभूति देती है माया उसको। बाकी जो मेरे दूसरे भाई हैं, वो सदैव हमारे साथ ही, भक्तों के साथ, 200-250 भक्तों के साथ में वृंदावन में आए हैं। वो बार बार फिर यात्रा में आते रहते हैं, जगन्नाथपुरी में आए हैं, मायापुर में आए हैं, वृंदावन में कई बार आए हैं। तो उन्हें बुरा अनुभव क्यों नहीं आया? क्योंकि वो जो बुरे अनुभव की स्थितियां हैं, उनसे उनको भक्त बचाकर, समझा समझा बुझा कर, संभल कर ले जाते हैं और राधा रानी के दरबार में प्रकट करा देते हैं। तो एक तो सेवा की छत्रछाया होनी चाहिए, कोई ऑर्डर, कोई सेवा होनी चाहिए वहां पर। जैसे हमारा बरसाना का आई कैंप है, उसमें भले आप 1 महीना रहो और उसी के अंदर रहो, वहां से बाहर मत चले जाओ, तो फिर ये पूरी जो अनुभूति, साक्षात्कार अनुभव जो हमको चाहिए, जिसके हम लालायित हैं, वो हमें प्राप्त हो जाएगा। ऐसा नहीं कि प्राप्त नहीं होगा, लेकिन अक्सर हमारे मन में उसको चोरी करके, हाँ, चोरी छुपे जाकर लेने का प्रयास रहता है। जैसे बरसाना आई कैंप में भी कुछ लोग सोचते हैं कि चलो रात को गोवर्धन परिक्रमा करके आए, चलो रात को, दिन में सेवा हो गई तो चलो कोकिला बन जाके आ जाए। ऐसे तरीके से ही साक्षात्कार, दिव्य अनुभूति नहीं होती है। उसके अंदर भी प्रोग्राम होते हैं, उसके अंदर भक्त लोग साथ में मिलके जाते हैं, साथ में परिक्रमा करते हैं, साथ में दर्शन करते हैं, साथ में यात्रा करते हैं, साथ में कथा सुनते हैं। तो क्या है, ये सुरक्षा कवच है। हाँ, जहां भी जाना है सुरक्षा कवच के अंदर जाना है। सुरक्षा कवच एक तो भक्तों का संग है, दूसरा है सेवा, तो उस व्यक्ति का पतन नहीं होता है। जो भी अकेले वृंदावन जाकर ये राधा रस महिमा को समझने का प्रयास करता है, ना तो न केवल उसको वो रस प्राप्त नहीं होता है, लेकिन जो भी उसके पास था अध्यात्मिक, तो भी जो भी धन था उसके साक्षात्कार के रूप में, वो भी नष्ट हो जाता है, उल्टा उसका पतन हो जा रहा है। ऐसे कई उदाहरण हमने हमारे जीवन में, हमारी आंखों के सामने अनुभव किए हैं। तो भक्त ऐसे, भक्तों का संग और भक्त एक ऐसी वस्तु भगवान ने हमको दी है, मनुष्य जीवन की परम परम प्राप्ति है। वो दुर्लभ मानव जन्म सत्संगे, वो सत्संग जो है, वो उसके उसके ऊपर कोई सुरक्षा कवच नहीं है। यहां तक कि सोते समय भी हमको वैष्णव के आसपास ही सोना चाहिए, ताकि हमें बुरे सपने आए, हम बुरी बुरी क्रियाएं रात में बेनियंत्रण होने के बाद भी न करें। ऐसे भक्तों की कृपा होती। तो मैं आपको, सबको विनती करता हूं कि राधा कृष्ण के विषय में जानने के लिए जो भी योग्य तरीके हैं उसी में से प्रयास करें, जो अपने मन घड़ंत बातें हैं उस तरीकों से प्रयास न करें, और राधा कृष्ण के लीलाओं को श्रवण करते हुए आचार्यगण बताते हैं कि एंजॉयमेंट, मनोरंजन, सुख के प्राप्ति के लिए ये लीलाओं को सुनना नहीं चाहिए। इन लीलाओं को सुनने के लिए भी मनोवृत्ति हमको तैयार करनी चाहिए, वो है ग्रैटिट्यूड यानी कृतज्ञता की मनोवृत्ति, कि हमारी योग्यता नहीं है फिर भी हमको सुनने को मिल रहा है, ये एक हुई भावना। और दूसरी मनोरंजन नहीं होनी चाहिए, दिल बहलाने की भावना नहीं होनी चाहिए, सेवा की भावना होनी चाहिए, श्रवण माध्यम से सेवा, और इंग्लिश में शब्द है ऑ एंड रेवरेंस, पूरे मान सम्मान के साथ, हाँ पूजन के भाव से, वर्शिपिंग द लीला, उस भाव से उसको श्रवण करना चाहिए। अगर राधा कृष्ण की चटपटी लीला भी होगी उसमें बहुत हास्य विनोद भी होगा, हंसने को भी आता होगा, लेकिन फिर भी उसको उस तरह से देखना नहीं चाहिए कि चलो बहुत गंभीर लीला की बात, मैं छोड़ दो, थोड़ा हंसी मजाक की बातें करूं, थोड़ा सा नींद उड़ जाए। हाँ इस प्रकार से लीलाओं को श्रवण नहीं करना चाहिए। लीला के लिए पूर्णतः कोई भी पीछे ऐसा टेक के आधार न लेते हुए सतर्क बैठकर, सीधे बैठकर, अटेंशन में बैठकर, मान सम्मान में बैठकर, एकाग्रता से कथा श्रवण करनी चाहिए। क्योंकि जब राधा और कृष्ण की लीलाओं का वर्णन होता है तो उस कथा में सारे संतगण, नारद मुनि से लेकर अगस्त्य मुनि, वेदव्यास जी, परशुराम जी महाराज, हनुमान जी, विश्व विभीषण जी, सभी चिरंजीवी जीव, सभी साधुगण, सभी देवी देवताएं, सभी शास्त्र, वेद, पुराण, उपनिषद, श्रीमद् भागवत व्यक्ति रूप में आके बैठ जाते हैं, सारे जितने तीर्थ हैं वो सब तीर्थ प्रकट हो जाते हैं, सारी नदियां, समुद्र, पर्वत, वन, जितने भी तीर्थ स्थान हैं वो सब उस सार में प्रकट हो जाते हैं, और एक ही साथ में कथा सुनते समय सभी तीर्थों का, सभी शास्त्रों का, सभी संतों का संग करने की प्राप्ति हो जाती है, लाभ हो जाता है। इसलिए कथा में अगर कोई सोता होगा तो उसको जगाना चाहिए, क्योंकि इतने बड़े मंडली के बीच में हम बैठ के कथा सुन रहे हैं जो हमको दिखाई नहीं पड़ रहे, लेकिन इस अनुभूति के साथ, इस कृतज्ञता के साथ, इस अपने भाग्य की अनुभूति के साथ में हमको उसको सुनना चाहिए, तब जाकर कुछ भी लीला सुनेंगे तो उसका जो साक्षात्कार है वो हृदय में प्रकाशित हो जाएगा। एक बात मुझे और याद आती है, एक बार बरसाने में एक लड़की वो पहाड़ पर बैठकर कुछ ईंटों को रचा रही थी, है ना। हम जाते हैं ना गोवर्धन के आसपास और परिक्रमा लगाते हैं, या तो बरसाना, गोवर्धन, नंदगांव, वृंदावन, ये कई जगह पर कई पक्का काम पक्का बना देते हैं, कभी ऐसे रख देते हैं ईंट, तो उसके पीछे भावना ये होती है कि निवास, ये निवास बनाते, मतलब एक घर की, घर ग्रह की प्रतिकृति बनाते हैं, एक टेम्पररी ऐसे सिंबॉलिक लक्षणिक बनाते हैं, ताकि भाव यह है कि ये घर है और मुझे इस धाम में घर प्राप्त हो, निवास प्राप्त हो, जन्म प्राप्त हो। तो एक बहुत सारे माताएं पुरुष यहाँ पर बनाते हैं, वृंदावन भाव ऐसा है कि हमें यहाँ पर ही आपके धाम में, निज धाम में निवास मिले। तो एक कन्या जो थी वो बना रही थी उसको, तो उस समय एक बुजुर्ग व्यक्ति, उस धाम के वासी, वहां पर आ जाते हैं और उसको कहते हैं बेटे क्या कर रही हो, तो कह रहे कि मैं यहाँ पर निवास की प्रार्थना कर रही हूं। तो कहते हैं झेल पाओगी इसको, अगर मिलेगा तो झेल पाओगी। वो कहते हैं कि ब्रज में, बरसाने में, नंदगांव में निवास प्राप्त करना एक तो आसान नहीं है, और निवास प्राप्त करने के बाद निवास करना बहुत कठिन है। एक धाम में हम लोग भक्तों के संग जाते हैं और 15 दिन के लिए, महीना भर के लिए यात्रा करते हैं, कैंप करते हैं भक्तों के संग में, पूरा ऐसा लगता है कि सब कुछ छोड़कर यहीं आ जाए और यहीं बस जाए। वो एक प्रकार का राधा रानी का एडवर्टाइजमेंट है हमें धाम के लिए आकर्षित करने का। लेकिन जब कोई ऐसा निर्णय लेता है कि अभी चलो मैं अभी सब कुछ छोड़कर ब्रज में जाकर रहता हूँ, गुरु जी ने भी आज्ञा दे दी है, उसके बाद में कष्टों का आरंभ होता है। गुरु जी की आज्ञा में भी जाने के पश्चात भी राधा रानी ब्रज के रस को देने के पहले बहुत कष्ट देती है, एक परीक्षा के रूप में, एक तैयारी के रूप में, एक शुद्धिकरण के रूप में। ऐसे ऐसे रोग होते हैं, ऐसे ऐसे घटनाएं होती है, लगती है कि भाग जाए यहां से। कुछ कुछ लोग माया में फंस जाते हैं, कुछ लोग सिंसियरली अपना आदर सेवा करते रहते हैं, गुरु जी की आज्ञा के अंदर ही ब्रज में उनको सेवा मिली है, वहां पर रहते हैं, निवास कर रहे हैं, लेकिन वहां पर इतना प्रकार का कष्ट होता है, इतनी भयंकर गर्मी होती है, कोई एसी की सुविधा, बिजली भी नहीं होती ठीक से, सर्दियों में इतनी सर्दी कड़ाके की होती है कि कोई वहां पर गर्मी हीटर की सुविधा नहीं है। ऐसे तूफान आता है बारिश में, एक ही बार दो बार बारिश आती है, लेकिन ऐसा तूफान आता है, ऐसे बंदरों का आतंक है। तो हमारे भक्तों की माता जो है वो 70 साल की, 75 साल की बांके बिहारी के पास बंदर कूद गया उसके ऊपर, तो बंदर कूदने से जो आघात हुआ उससे गिर गई और पैर की हड्डी टूट गई, 6 महीना एडमिट थी। केवल एक केले के लिए एक बंदर कूद पड़ा तो 6 महीने तक बिस्तर में ऑपरेशन, प्लास्टर और इमोबिलाइजेशन, इतना सारा घटनाएं हुई। तो ब्रज का निवास जो है ना वो सुनने को अच्छा लगता है कि ब्रजवासी कितने महान हैं, इनका जीवन कितना महान है, निश्चित रूप से महान है, लेकिन वो महानता की कीमत वो हमेशा चुकाते रहते हैं सहनशीलता के माध्यम से। जो भी राजा रानी भेजते हैं उसको सहन करने में वो उसकी कीमत चुकाते हैं। तो हम कल विचार कर रहे थे कि ऐसे भक्तों का आपको वर्णन करें जो बचा हुआ था। तो राधा कुंड पे रघुनाथ दास गोस्वामी जी भजन कर रहे हैं, हम सब लोग जानते हैं कि वो आत्महत्या करना चाहते थे, चैतन्य महाप्रभु के जाने के पश्चात विरह की अग्नि से उनको असह्य हो रहा था, सोच रहे थे कि गोवर्धन से कूद कर मैं आत्महत्या कर लूं, लेकिन फिर बाकी संतों ने उनको कहा, मेरे ख्याल से सनातन गोस्वामी ने कहा उनको कि आपका आप किसी की दूसरे की प्रॉपर्टी नष्ट कैसे कर सकते हो। तो उनको समझ में नहीं आया, उन्होंने कहा आपने संन्यास लिया है और संन्यास के समय पर आपका शरीर कृष्ण का हो जाता है, चैतन्य महाप्रभु का हो गया हुआ है, काया वाचा मने आप अभी जीवित नहीं हो, काया वाचा मने आप समर्पित कृष्ण को हो और शरीर से और भौतिक दृष्टि से आप मृत हो, और आपका जो शरीर आपको लगता है आपका है वो आपका नहीं है, तो आपको क्या अधिकार है कि अपनी इच्छा से उसको जब गोवर्धन से कूद कर नष्ट किया जाए। उससे अच्छा है कि आप राधा कुंड में रहो, वहां भजन करो, और जो जो आपकी चैतन्य महाप्रभु के विषय में जानकारी है, अनुभूतियां हैं, अनुभव है, वो सब लोगों को कथन करो आप। तो फिर उन्होंने आत्महत्या का प्लान छोड़ दिया और फिर वो राधा कुंड में भजन करने लगे। लेकिन वो इतने विरक्त थे, चैतन्य महाप्रभु भी स्वयं और कृष्णदास कविदास भी बताते हैं कि उनके वैराग्य की तुलना कोई भी करेगा तो वो मर जाएगा, निश्चित रूप से एक ही बात होगी, अगर कोई नकल करेगा तो वो मर जाएगा। 3 दिन में एक बार वो एक चुल्लू भर छाछ पीते थे, और वो भी अपने आप को कोसते हुए कि मैं कितना भोग ले रहा हूं। रोज 2,000 वैष्णवों को वंदन करते थे और 2 लाख जप करते थे, और ऐसा जप करते थे हमारे जैसा नहीं, एक माला में 2 झपकियां और एक माला में क्या बन रहा है ब्रेकफास्ट में उसका विचार, हा? और किसने क्या कहा था, कल झगड़ा किससे हुआ था उसके विचार, ऐसा जप करते थे कि राधा कुंड के किनारे में बैठकर जप करते थे बड़ी मग्नता के साथ, अपने शरीर के अनुभूति को, हाँ, अवेयरनेस को छोड़कर, लांग कर, परे जाकर वो तुरीयावस्था में भगवान के नाम का जप करते थे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, एकाग्र होकर एक नाम से एक रूप होकर नाम ध्वनि से अपने आप को समर्पित करते हुए जप करते थे, तो अपने होशो हवास खो बैठते थे कि बाहर क्या चल रहा है। तो राधा कुंड उस समय जहां महाप्रभु जब गए थे उसके समय पर, उसके बाद में बड़ा जंगल था, खेत थे, वहां पर कोई बस्ती वस्ती नहीं थी, तो शेर आया करते थे जल पीने के लिए राधा कुंड में, वो भी ब्रजवासी शेर थे भाग्यवान, राधा कुंड का द्रव रूप राधा रानी का प्रेम प्रापन प्राप्त करते थे, लेकिन वो मनुष्यों के लिए थोड़े हानिकारक या भयकारक भी होते थे। तो जब शेर पानी पीने को आए तो भी ये मग्न होकर उसी किनारे वहीं पर बैठकर जप कर रहे, उनको भान ही नहीं है। तो श्री कृष्ण स्वयं प्रकट होते हैं और डंडा दिखाकर शेरों को भगा देते हैं, चेसिस अविद टाइगर्स, और सनातन गोस्वामी इसका दर्शन कर रहे हैं इस लीला का, तो आकर बोलते हैं अरे रघुनाथ भजन किसके लिए कर रहा है तू, राधा रानी कृष्ण की सेवा करने के लिए कर रहा है कि उनसे सेवा लेने के लिए कर रहा है, आज मैंने ये दर्शन किया। फिर भी वो इतने विरक्त थे, वो कुटी वुटी बनाने के मूड में नहीं थे। फिर एक बार और एक प्रसंग आया, गर्मी का मौसम था और गर्मी में आज भी वृंदावन धाम बसाना में, राधा कुंड में, 50 51 52 तक टेम्परेचर पहुंच जाता है। हमने उसका अनुभव किया, उसमें कोई इलेक्ट्रिसिटी नहीं है, पंखा नहीं चलता है, आप एसी वैसी तो भूल ही जाओ। ऐसी और पथरीले विभाग में जैसे गोवर्धन के पास, बरसाने के पास रहेंगे तो बहुत भयंकर पत्थर गर्म होता है और रात को भी गर्मी देता है वो। जलाशय के पास में रहेंगे तो थोड़ी ठंडक देगा आपको, लेकिन पथरीला इलाका रात को भी भयंकर गर्मी, लू देगा, भयंकर लू चलती है वहां पर, हम लोग विचार नहीं कर सकते। सब मती जो है ना वो विकार में चले जाते हैं। एक हमारा साइंटिफिक सिचुएशन है, जब बहुत ज्यादा गर्मी होती है तो एक भ्रमित अवस्था होती है, तो वैसी स्थिति में वो जप कर रहे हैं। और उनका शरीर जो है ना, चर्म जो तप रहा है पूरा भयंकर अग्नि से, इतनी इतनी आंच थी सूरज की, तो इतनी आंच में उनकी उनका चर्म भी जलन जैसी स्थिति में था। तो उस समय राधा रानी प्रकट हुई, और ये तो अपने भाव में कहीं कहाँ है पता नहीं उनको। उनके शीश के ऊपर राधा रानी ने अपना जो पल्लू है उसको फैलाया, अपने उत्तरीय वस्त्र को फैलाया, और रघुनाथ जी को अपनी छाया में रखा और स्वयं धूप में खड़ी रही, और राधा रानी के कपाल प्रदेश से दिव्य श्वेत बिंदु निर्माण हो रहे थे, यानी कि उनको पसीना आ रहा था। खुद पसीना को अनुभव करते हुए, गर्मी का अनुभव करते, राधा रानी अपने प्रिय भक्त को छाया दे रही है। और ये दर्शन फिर सनातन गोस्वामी ने किया, और फिर उस समय सनातन गोस्वामी ने उनको दोबारा डांटा, क्योंकि वो तो बड़े थे, उनको तो अधिकार था, बड़े भाई के समान थे, वो गुरु भी थे, गुरु समान थे, शिक्षा गुरु। उन्होंने कहा कि रघुनाथ क्यों ऐसे कर रहे हैं, आप जानते हो राधा रानी स्वयं आए थी आप आज के लिए, आज आपको छाया देने के लिए, ऐसा भजन भी मत किया करोगी जिसमें ठाकुर जी को सेवा 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 आप दे दें, या ठाकुर जी आपकी सेवा में लग जाए, ये अच्छा नहीं है एक भक्त के लिए। तो फिर इस बात को सुनने के पश्चात फिर रघुनाथ दास गोस्वामी ने एक छोटी कुटिया बना दी और उसके अंदर भजन करने लगे। सनातन जी का यही उनको मार्गदर्शन था कि आप एक अपनी कुटिया बनाओ, ताकि गर्मी सर्दी बारिश से आप बचे रहोगे और किसी को सेवा करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, खास करके भगवान राधा और कृष्ण को। आप सोच सकते हैं कि रघुनाथ दास गोस्वामी कितने उच्च महान भक्त होंगे, सब भक्त भगवान की सेवा में लालयित होते हैं, और राधा रानी और कृष्ण अपने भक्तों की सेवा में पीछे पीछे डोलते हैं उनके। हाँ, एक तो सुदर्शन जी पीछे पीछे डोलते हैं रक्षा करने के लिए, और जिनका नाम राधा रानी का नाम लेते हैं, धायती ससंभ्रमः, हाँ, एक पागल की तरह भ्रमित होकर उनके नाम से, ध्वनि से भ्रमित होकर कृष्ण भाग पीछे पीछे भागते हैं, राधा रानी भी पीछे पीछे भागते हैं। हाँ, विट्ठल रखुमाइयों को भी ऐसी कथा है, तो अपने भक्त के पीछे पीछे भागते हैं उनको सेवा देने के लिए, इतने विरक्त होते हैं, कुछ लेते नहीं है, उनको देने के लिए भागते हैं, लेकिन फिर भी वो लेते नहीं है, तो उनके हो जाते हैं फिर वो। ऐसे राधा रानी की कृपा है। उसके बाद में जब ही राधा गोविंद मंदिर का निर्माण होने का कार्य शुरू हुआ, उसके पहले वो पेड़ के नीचे योग पीठ पर रूप गोस्वामी प्रकट हुए, राधा गोविंद जी की सेवा करते थे। फिर राजा मान सिंह वहां पर आए, वो जो अकबर के सेनापति थे, वो शिष्य थे शायद रघुनाथ भट्ट गोस्वामी, उन्होंने रूप गोस्वामी को निवेदन दिया कि मैं कोई सेवा करना चाहता हूं, मैं राधा गोविंद जी के लिए। तो उन्होंने कहा कि मैं तो सन्यासी हूं, मुझे कोई सेवा की आवश्यकता नहीं है, आप राधा गोविंद जी के लिए बनाओ। तो बहुत धनी थे वो, उन्होंने फिर वो बहुत ही सुंदर 7 मंजिल का बहुत कलाकृति से संपन्न ऐसे अद्वितीय मंदिर बनाया, लेकिन निर्माण काल में बहुत समय लगा। जैसे मदन मोहन जी का मंदिर निर्माण काल में समय लगा, तो सनातन गोस्वामी कृष्णदास ब्रह्मचारी को मदन मोहन जी का विग्रह देकर चले गए भ्रमण में, और गोवर्धन में रहे, पावन सरोवर के तट पर रहे, रूप गोस्वामी जाकर रहे 13 कदम्ब, इस विभाग में 13 कदम्ब में कृष्ण अपनी गैयाओं को बुलाते हैं, कदम्ब के कदम्ब चढ़ कान बुलावत गाय, कदम्ब के ऊपर की डाली पर बैठकर मुरली बजाते हैं और गायों को बुलाते हैं। ऐसे पवित्र स्थान पर रूप गोस्वामी ने भजन किया है, और वहां पर बैठकर ये हम जो ग्रंथ पढ़ते हैं ना सब, भक्ति रसामृत सिंधु, उपदेशामृत, ललित माधव, विदग्ध माधव, ऐसे बहुत बहुत सुंदर सुंदर जो ग्रंथ है, हमारे संप्रदाय के आधार है पूरे, वो सब वहां एकांत में चिंतन करते हुए कृष्ण बलराम की क्रीड़ा स्थली में, गौचारण की स्थली में बैठकर लिखे हैं, तो वो भी ऐसा भजन करते थे, हाँ, मग्न होकर रूप गोस्वामी जी। हमारे संप्रदाय के तो प्रमुख आचार्य, हम सब लोग रूपानुग के रूप में अपने आप को जानते हैं, हमारी पहचान रूपानुग है, रूप गोस्वामी के अनुयायी के रूप में। तो वहां पर जब भजन कर रहे थे तो पास ही पावन सरोवर है, तो समय सनातन जी भी वहां भजन कर रहे थे कुटिया में, भजन कुटी में। तो सनातन गोस्वामी का जन्मदिन आया, उस समय रूप गोस्वामी को इच्छा हुई कि अरे बड़े भाई जैसे गुरु जैसे हैं, उनका जन्मदिन के लिए कुछ करना चाहिए, कुछ खीर बनानी चाहिए, उनके सत्कार में मनाना चाहिए जन्मदिन संतों का। लेकिन फिर वो इतने सेवा में मग्न थे, वो सोचेंगे अभी मैं चावल कहाँ से लाऊंगा, दूध कहाँ से लाऊंगा, मेवा कहाँ से लाऊंगा, शक्कर कहाँ से लाऊंगा, मीठा कहाँ से लाऊंगा, ये बहुत बड़ा प्रयास है। तो वही विचार उन्होंने छोड़ दिया, लेकिन मन में उनकी बहुत ही प्रामाणिक इच्छा थी कि बड़े भाई के जन्मदिन का उत्सव मनाएं। और फिर अपने लेखन में लग गए, सेवा में। उतने में एक सुंदर कन्या आई, हाँ, नीला घाघरा पहन के, गुलाबी ब्लाउज पहन के, और सुंदर चुनरी लेकर, सर पे उसके टोकरी है, और वो आती है, कहते महाराज जी दंडवत प्रणाम महाराज जी। तो कहते बताओ बेटी, कहते मैया ने आपके लिए आज खीर का सामान भेजा है, दूध भेजा है, चावल भेजे हैं, मेवा भेजा है, शक्कर भेजी है, बहुत सारे वस्तुएं भेजी है महाराज जी, आप आज इसके लिए, इससे आप अपनी खीर बना लेना। तो वो इतने मस्त मग्न थी सेवा में कि उन्होंने कहा कि बेटी मुझे बनाने के लिए समय नहीं है, अगर तुम्हारे पास समय है तो तुम बना लेना। तो वो कन्या फिर चूल्हे में चूल्हा जलाया उस कन्या ने, और वो सामान जो उतारा, और बर्तन लिया, और बहुत प्रेम से उस खीर को बनाया, और वो खीर को तैयार हो गए। तो बोले महाराज जी खीर तैयार है, आप अभी भोग लगाइए, मैं अभी आती हूँ जाकर बर्तन और लेके जाने के लिए। तो फिर रूप गोस्वामी ने उस खीर का भोग लगाया, ठाकुर जी को भोग लगाया, और उनको लगा कितनी आश्चर्य की बात, देखो मैंने तो आज खीर की सोची थी, सनातन गोस्वामी मेरे भाई जन्मदिन के उपलक्ष्य में, देखो और ठाकुर जी ने व्यवस्था कर दी। तो वो भोग ही लगा रहे थे, उसका प्रसाद बना बना ही वो बन ही गया, अभी भोग लगी गया नैवेद्यम, उतने में सनातन गोस्वामी वहां पर आए। उनको लगा सोने पे सुहागा, अभी ये तो चमत्कार ही हो रहे हैं आज, एकदम सही वक्त पे सनातन जी गोस्वामी आए। तो आइए आइए महाराज जी, आइए बड़े भैया, आइए ज्येष्ठ भ्राता, बैठिए, आपको जन्मदिन की बधाई हो, हमारा आपके लिए वंदन है, हमें आशीर्वाद दीजिए। और उनको उन्होंने वो खीर परोसी। हाँ अभी देखिए वो खीर दोनों भैया एक साथ परोसने के लिए बैठे, जन्मदिन की हार्दिक बधाई हुई, और फिर सनातन गोस्वामी हाथ से वो खीर को प्राशन करने लगे। और जैसे ही उन्होंने प्रथम ग्रास प्राशन किया, उसका आस्वाद लिया, तो उनकी आंखों से आंसू आने लगे, रोमांच खड़े हो गए, कंठ गदगद हो गया, भाव से विभोर हो गए। वो बोलते हरे रूप, ये तुमने खीर कहाँ से लाई, बताओ कहाँ से लाई। और वो बोल भी नहीं पा रहे, आंखों से अश्रु बह रहे, और वो खाए खीर इतने से जैसे अनियंत्रित रूप में उसको खाए जा रहे। और फिर रूप गोस्वामी कहते हैं ऐसे एक लड़की आई थी, उन्होंने ये सब सामान लाया था, और वो मैंने कहा समय नहीं है आप बना दो, तो उन्हें बना दिया। बताओ बताओ उस लड़की का वर्णन करो, तो फिर लड़की का वर्णन किया उन्होंने। तो कहते हैं अरे रूप, तू जानता नहीं है, तू स्वयं राधा रानी थी, ऐसा दिव्य स्वाद, ऐसे दिव्य चावल, ऐसे दिव्य दूध का स्वाद मुझे कभी मैंने जीवन में लिया नहीं, मैं पूरी तरह से साक्षात्कार हो रहा है कि वो स्वयं राधा रानी तुम्हारी कुटिया में आकर ये खीर बना के गई है, कैसे भक्त हो तुम, तुमने राधा रानी से सेवा लिया। हाँ और डांटने लगे उसको, और डांटने लगे कि इनको खीर खा रहे, कि उनके द्वारा बनाई गई, उनको सेवा में लगाकर बनाई गई खीर तुम खा रहे हो, तुमको शर्म नहीं आती, मतलब प्रेम में कह रहे हैं, कैसे भक्त हो तुम, उनसे सेवा लेकर उनका भोग लेते हो, ऐसे उसको प्रेम से डांट रहे हैं और खुद खीर खा ही रहे हैं, और रूप गोस्वामी भी खा ही रहे हैं, क्योंकि वो इतने इतना दिव्य स्वाद था, राधा रानी की इतनी कृपा थी उसके अंदर, कि सनातन गोस्वामी को लग रहा था कि ये सेवा राधा रानी को सेवा में लगाकर हमको उसका भोग नहीं लेना चाहिए, फिर भी वो ले ही रहे हैं, खा रहे हैं, खा रहे हैं उसको, एक तरह से वो प्रेम से डांट रहे हैं रूप गोस्वामी को, लेकिन रूप गोस्वामी की महानता का भी अनुभव कर रहे हैं कि देखो मेरे भैया रूप गोस्वामी कितने महान हैं, स्वयं राधा रानी उनकी एक क्षण मात्र की जो प्रामाणिक इच्छा है उसको पूर्ति करने के लिए आकर उन्होंने स्वयं अपने घर अपने हाथों से वो सामान लाया, दिव्य सामान अपने दिव्य हाथों से, जिनको वो कृष्ण को खिलाया करती थी, वो हाथों से उन्होंने खीर पकाई, और रघुनाथ दास को सनातन गोस्वामी का जन्मदिन के लिए, हाँ दोनों भक्तों के लिए प्रेम प्रकट किया राधा रानी ने, रूप गोस्वामी की इच्छा को पूर्ण किया, और सनातन गोस्वामी के जन्मदिन को मनाने के लिए स्वयं राधा रानी ने सेवा दिया। तो ये जो है ना चिरंतन प्रतिस्पर्धा है, भक्त लोग भगवान की सेवा में प्रयत्न करते रहते हैं, भगवान भक्तों की सेवा में प्रयत्न करते रहते हैं, ट्रांसेंडेंटल इटर्नल कॉम्पिटिशन। फिर मैं कल आपको बताने वाला था कि किसी ने पूछा था कि जिस पर राधा रानी की कृपा हो गई है ऐसे भक्तों को हम कैसे पहचाने। हाँ, ये भी उन्हीं की कृपा है कि ऐसे भक्तों का हमें परिचय होता है और हमको पता भी चलता है कि ऐसे भी भक्त होते हैं। हाँ, जिस घर में राधा रानी महाराज रहते थे, बरसात घर पे रहते नहीं थे लेकिन घर में माधुकरी करते थे और ऊपर रहते थे मान मंदिर पे, तो उस घर को कहते हैं रस मंदिर। और वो रस मंदिर में एक माता, एक पिता और तीन भाई और दो बहने, ऐसा परिवार था। और वो घर पर ऐसी कृपा है कि जब से हमने देखा है और जब से महाराज जी बताते हैं 1971 के पहले से, जब सब लोग एकदम युवा अवस्था में थे, छोटे छोटे बच्चे थे 5 साल के 6 साल के, तब से इनके घर में अनंत भंडारा चलता था। एकदम गरीब अवस्था थी लेकिन रोटी अचार, रोटी आलू की झोल सब्जी जो भी आएगा उसको पवाते थे। और राधा अष्टमी होली ऐसे मौसम में तो हजारों लोग पाते थे, पता नहीं धन कहाँ से आता था, लेकिन इनका हृदय इतना उदार था कि घर का भी निकाल के देते थे और लोगों को बांटते थे। कोई पूछते नहीं तुम कौन हो, कहाँ से हो, परिचय के हो कि नहीं हो। तो इसमें वो जमुना मैया, जो माता की बात कर रहा हूं मैं, यमुना मैया बड़ी प्रधान थी वो, उसका बड़ा इंस्पिरेशन था। और वो दिन रात जो है वो रसोई में लगी रहती थी और रोटियां बना बना के मेहमानों को खिलाती थी। उसमें से कोई परिचय का नहीं हुआ करता था, बहुत कम लोग परिचय के हुआ करते थे। हम भी जब गए थे तो परिचित थे, एक ही महाराज परिचित थे, उनके साथ में 50 लोग आए थे, 25 लोग आए थे। और बाद में एक बार परिचित हो गए, 25 तो फिर और 25 को लेकर अगली बार आएंगे, फिर वो 50 हो जाएंगे, फिर वो 50 और 100 को लेकर आएंगे, ऐसे करके उनके पास में हजारों लोगों का परिचय हो गया है। और वो कभी भी आके वहां पर आ जाते हैं, मतलब कोई बताने वगैरह का वहां पर नियम नहीं है। अभी तो फोन वोन आ गए, बताते रहते हम लोग, लेकिन उस जमाने में तो सीधे आके ही टपक जाते थे वहां पर और उनकी सेवा की जाती थी। कभी भी आओ, लंच के समय पे आओ, लंच के बाद आओ, डिनर के समय पे आओ, यमुना मैया इतनी उसमें लगी थी। तो मुझे याद है कि उनकी जो लड़कियां थी उन्होंने विवाह नहीं किया, ये सोचकर कि देखो इस घर में इतनी सेवा हो रही है, तुम विवाह करके पति के घर जाओगे तो यहाँ पर तुम्हारी सेवा भी छूट जाएगी और सेवा करेगा कौन फिर यहाँ पर। तो इस त्याग की भावना से दोनों कन्याओं ने विवाह नहीं किया, केवल सेवा के लिए। देखिए इतना बड़ा त्याग जो है ना वो राधा रानी की कृपा का ही परिणाम है। ऐसा बड़ा त्याग कौन कर सकता है, अपने निजी जीवन का, निजी आनंद का, निजी सुख का जो जायज है उसको त्याग करके केवल सेवा के लिए जीवन समर्पित करना, वो भी 1 साल 2 साल तक निश्चय टिका रहेगा लेकिन भाग्य निश्चय खत्म हो जाएगा। तो दोनों ने भी बड़ी भरी युवावस्था में निर्णय ले लिया, पूरी जिंदगी। अभी वो सब बहनें जो है अभी वो खुद 60-65 साल की, मुझसे भी बड़ी है, तो वो सब युवावस्था में थी जब हम गए थे वहां पर। तो वो विवाह नहीं किया उन्होंने, तो देखिए कैसा कष्ट ब्रज में होता है। तो आसपास के लोग ताने देते थे कि जो इतने सारे मेहमान आते हैं ना बाहर से पैसा लेकर, उनके उनके शरीर सुख के लिए उनको इन्होंने घर पे रखा है, उनका विवाह नहीं किया है। ऐसे ऐसे कठोर हृदय भेदक टीकाओं को उन्होंने सहन किया, घर पे इतने लोगों ने हमले किए हैं। हाँ, बिकॉज ऑफ एनवी कि इतना लोगों को खाना खिला रहा है, इतने लोग यहाँ पर आकर भजन करते हैं, इतनी कीर्ति बढ़ रही है, इस द्वेष के कारण कई लोगों ने गोलियां चलाई है उनके घर पे, उनके घर पे, उनके मित्रों के घर पे, क्योंकि वो उनके सहकारी थे। इस सभी प्रकार के, और गर्मी सर्दी तो है ही, बिना किसी बिजली के उन्होंने कितने साल सेवा की। फिर हम लोग 92 में वहां पर आए, कैंप में गए, और हम जा आपको आश्चर्य होगा सुनकर, उसमें वहां पर तो कुछ भी व्यवस्था नहीं थी, एक टूटा फूटा घर था, बड़ा घर था लेकिन टूटा फूटा था। हम लोग 68 लोग वहां पर जाके रहे, कुछ माताएं, कुछ प्रभु डॉक्टर, सब मिलकर उनके घर पे ही टाट से कमरे बनाए गए, बहुत सारे टाट के ऐसे टेम्पररी कमरे बनाए गए, उनके आंगन में गड्ढे खोदकर टाट के टॉयलेट बनाए गए। बड़ी ठंड में, जनवरी में, हमको पता नहीं था कि जनवरी में ठंड होती है, हमको मुंबई के जनवरी का अनुभव था हम लोग वहां से। तो इतने कठिन काल में जो लू, वहां पर बर्फ क्या कहते हैं उसको, बहुत बड़ा धुंध होती थी, सुबह कुछ दिखाई नहीं पड़ता था, इतना बड़ा धुंध हुआ करती थी। और रात को 12 बजे पानी गर्म करती थी मैया, ताकि इतना बड़ा भगोना गर्म पानी का, इतने साथ में 1 घंटा लगेगा उसको तो सुबह तैयार होने के लिए, लोगों को देर हो जाएगी, डॉक्टरों को। तो 12 बजे वो रात को भगोना लगाती थी और पाना पानी गर्म करके छोड़ती थी और सुबह दोबारा गर्म करती थी ताकि 5 मिनट में वो पानी उबल जाए। अभी देखिए, रात को 11 बजे तक यमुना मैया सब लोगों को दूध पिलाती थी। बेटा दूध पी लिया तुमने, बेटा दूध पी लिया तुमने, 68 लोगों को एक एक ग्लास भर के, ऐसा नहीं कि लिमिटेड, और चाहे तो और भी मिलता था, सबको दूध पिलाती थी। देर तक हम लोग कैंप से आते थे सेवा करने करके, तब तो जगी रहती थी। और उसके बाद में कंबल लेकर सबको देखती थी, तुम्हें कंबल है, कंबल है, रजाई है तुम्हारे पास, नहीं है, और सबको, सबका राउंड लेती थी, माताओं के पास, प्रभुगणों के पास जा जाकर पूछती थी कि आपके पास कंबल तो नहीं है, कंबल है ना आपके पास, पर्याप्त है, और चाहिए तो ले लो। और सब लोग अगर शांत से सो जाएं कंबल के गर्मी के अंदर, फिर ये 12 बजे तक वो चूल्हा जलाकर उसको बंद करके सोती थी। और सवेरे ये सब लोग 3:30 बजे उठते थे, क्योंकि 5 बजे हम लोग कैंप में सेवा करते थे, तो तभी भी ये जगी रहती थी। और सब लोग गर्म पानी की व्यवस्था कर रही है, वो लकड़ी डाल रही है उसके अंदर, वो चूल्हे के अंदर वहां पर बड़े भगोने में पानी डाल रही है, जैसे पानी समाप्त हो रहा है तो पानी डाल रही है ऊपर द्वारा, इतना ख्याल करती थी। और उस बीच में हम लोग जब कैंप में जाते थे तो अपना पूरा भागवत खोलकर भागवत का पाठ करती थी रोज, अपना जप भी करती थी, अपना गायन की सेवा का वो भी करती थी। अमेजिंग अमेजिंग। और वो माता जो है वो, उसको कैंसर हो गया अंतिम क्षण में। इतनी मैंने उनको, कई साल तक कैंप में उनके घर में रहते थे हम लोग, उनके घर से सेवा लेते थे, खाना पीना रहना जो चाहिए, लड्डू चाहिए, अचार चाहिए, रोटी चाहिए, क्या चाहिए, जब किसी भी समय चाहिए वो देते रहते थे। और क्या बर्तन चाहिए तुम्हें, क्या गैस सिलेंडर चाहिए, सब कुछ दिया करते थे। और मैं देख रहा था कि उनको निजी जिंदगी कुछ है ही नहीं, उनके लिए खुद का स्पेस है ही नहीं, कुछ प्राइवेट लाइफ है ही नहीं उनका, कुछ पूरे दिन भर लगे रहते थे, और उनके लिए सोने के लिए भी समय नहीं होता था, क्योंकि सोने के समय की भी लोग आते थे खाना खाने के लिए, जैसे हम लोग भी टपके थे, 4 बजे के समय विश्राम कर रहे थे तभी उठकर तुरंत चूल्हे में भागे उधर रसोई में। तो जब से संपर्क हुआ तब से उनके जीवन के अंत तक हमने उस मैया को देखा है। फिर आखिर में उसको, वो कहते हैं ना एक्सफोलिएटिव डर्माटाइटिस, मतलब पूरा चर्म उसका शरीर से झड़ने लगा था, बहुत भयंकर पीड़ा में थी वो। और हमने उनका मेडिकल ट्रीटमेंट भी किया, काफी देखभाल किया, लेकिन जहां सोती थी पूरा उसका चर्म जो है ना वो पाउडर के रूप में बिस्तर पे गिरता था, और इतना लाल लाल शरीर, इतना जलता था शरीर उनका, और कितनी भयंकर बीमारी थी उनको, वो धूप में पड़ी रहती थी, लेकिन कभी रोती नहीं थी, कंप्लेन नहीं करती थी, कभी भी शांति से भजन करके रहती थी वो। और इतनी जर्जर हो गई थी कि राधानाथ स्वामी महाराज और मैं उन्हें एक बार, मुझे याद है 2 जनवरी का दिन था वो, हम उनको मिलने गए थे, कि ज्यादा ही बीमार थी वो जमुना मैया, तो उसको अपनी उंगलियां भी हिलाने का शक्ति नहीं हुआ, इतनी जर्जर हुई थी वो। लेकिन जिस कमरे में उनको रखा था उस कमरे में एक ऐसा कैलेंडर था राधा गोपीनाथ जी का, और वो भी उस साल में ऐसा कैलेंडर बनाया था राधा गोपीनाथ मंदिर में कि राधा रानी का श्रृंगार स्वयं परम पूज्य राधानाथ महाराज जी ने किया था, उसका कैलेंडर बनाया था, और वो कैलेंडर उनको दिया था, वो कैलेंडर वो अपने आंखों के सामने उन्होंने दीवार पर रखा था, और वो देखा करती थी उसको। तो जब हम लोग पहुंचे तो ये हिल भी ना सकने वाली माता जी राधानाथ स्वामी महाराज को देखकर ऐसे उठकर बैठ गई एकदम, ऐसे पता नहीं कहां शक्ति आ गई उसको, और सोने को तैयार नहीं, बोले महाराज जी आप आए हैं, अरे महाराज जी। और क्या श्रद्धा थी उनकी, उनके जो बाबा हैं वहां पे जो गुरु समान हैं, वो कहते हैं हमारे जीवन में केवल 2 ही श्रद्धा है बस, हम किसी को और श्रद्धा रखते नहीं, एक हमारे गुरु वो यहाँ पर रहते हैं और एक राधानाथ स्वामी बस। कितनी कितनी ना समझने वाली बात है ये, एक देसी इलाहाबाद बॉर्न ब्राह्मण कुल के साधु हैं और एक विदेश में जन्मे हुए जू धर्म के पालन करने वाले अंग्रेजी बोलने वाले साधु हैं जो वहां पर रह चुके हैं, इतनी श्रद्धा थी उन्हें उनकर, उठकर बैठ गए कि मैं नहीं बैठ सकती, सो सकती आप जब आए हैं। तो बहुत देर तक उनकी बातें हमने की, और इतना सुंदर आदान प्रदान हुआ, इतना सुंदर नम्रता पूर्वक उसने अपने आप को प्रस्तुत किया, इतनी भयंकर शरीर की अवस्था में भी। और फिर हम लोग चले आए, फिर 2 दिन के बाद में उनका देहांत हुआ। कैसे देहांत हुआ उनका, 2 दिन के बाद में जब उनकी सांसें घर घर होने लगी, हाँ, तब उनके साधु महाराज आए नीचे, ऊपर ऊपर से नीचे आए, तो उन्होंने इनके शीश को अपने गोद में लिया और राधा नाम उच्चारण करने लगे, देखिए कितनी उच्च अवस्था है। हाँ, ये राधा की कृपा का परिणाम है, लाइव एक्सपीरियंस है वो। तो फिर उन्होंने मैया से पूछा, मैया बहुत जागरूक थी, मतलब कॉन्शियस थी। मैया से पूछा, मैया क्या चाहती हो, आखिरी इच्छा क्या है बताओ। तो अपने गुरु को उन्होंने कहा कि आपके चरणों के धोया हुआ जल चाहिए मुझे पीने के लिए। तो बड़ा गंभीर होकर साधु महाराज ने अपना अंगूठा जो है वो दिया पात्र में। तुरंत उनके बच्चों ने, लड़कियों ने तुरंत उनके चरण धोए और अंगूठे का पानी लिया और माता के मुंह में दिया, और माता के मुंह में देते उसने प्राण छोड़ दिए राधे उच्चारण करते हुए। आपने पूछा था ना कि क्या लक्षण होते हैं उस व्यक्ति के जो राधा रानी की कृपा प्राप्त कर लेता है। अनन्य शरणागति, अनन्य समर्पण, और पूरा जीवन सेवा सेवा और सेवा में लगे रहते हैं, केवल दूसरों के कल्याण के लिए। वो जाने चाहे पहचाने हो, न पहचान के हो, संत हो, साधारण जीव हो, सबके लिए समर्पित भाव से सेवा करते रहते हैं ऐसे लोग। तो ऐसे ये जो जीवन है ना, ये हमको दूर से बहुत अच्छा लगता है, कथा सुनने में मतलब वाह वाह क्या जीवन है, ऐसा जीवन होना चाहिए। लेकिन उस जीवन को जीने के लिए कितने कष्ट सहने पड़ते हैं, कितना तपस्या करनी पड़ती है, कितना त्याग करना पड़ता है, कितने सहनशीलता को अपनाना पड़ता है। ब्रज में रहना आसान नहीं है। ब्रज में राधा रानी की कृपा प्राप्त होकर निवास प्राप्त हो गया, तो उस निवास की कीमत चुकानी पड़ती है बार बार अपने समर्पण के द्वारा। एक तो वहां से भागने का दिल करता है, इसलिए उस बूढ़े बाबा ने वो कन्या को कहा था, क्या झेल पाओगी, क्या यहाँ पर रहोगे तो झेल पाओगी, राधा रानी के धाम में रहना चाहती हो, निवास बनाना चाहती हो, कल्पना बहुत अच्छी है, बहुत काव्यमय कल्पना है, लेकिन वास्तविक स्थिति में आओगी, स्थिति में तो भयंकर कष्ट होते। मैंने ऐसे ऐसे कष्ट देखे वहां पर। एक पेशेंट देखा था मैंने, हाँ, वो पंखा जो है उसका सामने का कवर निकल चुका है, और पंखा स्टैंडिंग पंखा है, स्टैंड वाला पंखा चालू है, वायर ऐसी लटकी हुई सब पे सामने से जा रही है प्लग में, तो कोई व्यक्ति की पैर लगकर वो चलता हुआ पंखा गिर जाता है, और वो गिर कर किसी की आंख में लगता है, और आंख उसके दो विभाग में कट जाती है। कल्पना भी नहीं कर सकते ऐसे कैसे हो सकता है। इसी ब्रिजवासी के घर में जहां पर हम लोग ने कैंप लगाया था, हमारा निवास था, जहां पर वो जमुना मैया जी का देहांत हुआ, जो लोग भ्रमण और लोक गमन हो गया, उसी घर में एक एक भाई की कन्या है, छोटी सी कन्या। वो खेलते खेलते, अभी उनके घर में इतने बड़े बड़े भगोने में खाना बनता था, हाँ, जमीन पर वो बड़ा गैस का चूल्हा रखे, कभी लकड़ी का चूल्हा रखे, बड़े बड़े भगोने में खीर बनती थी, चावल बनता था, दाल बनती थी, आलू का झोल बनता था। तो ये लड़की सब वहां खेलते थे बच्चे बच्चे। तो हम आज तक यकीन नहीं कर सकते कि वो लड़की जो है वो 4 साल की थी, वो उस खीर के भगोनों में गिर गई पूरी अंदर। पता नहीं कुतूहल से कुछ देखने गई होगी, अंदर फिसल गई वो पूरी तरह से खीर के अंदर, और इतनी जल गई थी वो। 22 दिन तक अस्पताल में रही, अब बाद में ठीक हो गई। आज बहुत बढ़िया उम्र से जवान हो गई है बहुत। और उस घर में एक ही व्यक्ति ने विवाह किया, एक बड़े जो बुजुर्ग थे उनके पुत्र वो सन्यासी महाराज बन गए, वो भागवत कथाकार, प्रथम भागवतकार बन गए। कि दो कन्या अविवाहित रह के सेवा में लग गई। एक ही भाई ने विवाह किया, हाँ, दो भाई ने विवाह किया, एक भाई को विवाह हुआ, उसको बच्चे हुए, उसको 5 बच्चे हुए। अभी देखिए कृपा का परिणाम देखिए आप। तो पांच पांच पुत्र पुत्रियां, मतलब तीन तीन पुत्रियां, नहीं, दो पुत्र और तीन पुत्रियां हुई, तीन लड़कियां और दो पुत्र हुए। अभी आपको क्या बताएं, उनको इतना उनका निंदा किया गया कि अरे सब सन्यासी का घर है, तुम ये कि यहाँ पर भोग में लगे हो, विवाह कर ले हो, ऐसे कर रहे हो, ऐसे कर रहे हो। ये भी उसको बहुत सारा झेलना पड़ा। मेरे उम्र का है वो, मेरा अच्छा दोस्त है, हाँ, ब्रजवासी। तो उनको विवाह के लिए इतना टोका गया कि तुम ये सब विरक्त घर में तुम ऐसे भोगी लग बैठे हो, ऐसे करके बहुत ताने दिए उनको। लेकिन देखो कैसे भक्त हैं ये, हाँ, विवाह किया और भोग की गालियां खाते खाते जो बालकों को जन्म दिया ना, वो 5 बालक, 5ों भागवत आचार्य हैं। उसमें से एक जो कन्या है उनकी, वो विश्व भर में भागवत कथा करती है, संस्कृत की पंडिता है वो, और पूरे विश्व भर में, दुनिया में वो 210 दिन तो वो यात्रा में रहते विदेश में, और बाकी के दिन इंडिया में यात्रा रहते। कहीं फुर्सत ही नहीं है, एक दिन 7 दिन के बाद 2 दिन छुट्टी ले तो और कहीं कानपुर में है, फिर उसके बाद में और कहीं गुजरात में है, कोई और यूपी में है, कोई पंजाब में है, कोई किस जगह पर है। अपने उम्र की 13 साल से पूरा भागवत का अध्ययन करके भागवत की कथा कर रही है। उनको भी कोई बच्चों को भी विवाह करने की इच्छा नहीं है, देखो आप। तो ये जो हम अनुभव करते हैं ना, ये राधा रानी की कृपा है। बिना राधा रानी की कृपा से कोई सामान्य भौतिक इच्छाओं का त्याग नहीं कर सकता है। ये विवाह करना कोई पाप नहीं है, ये कोई अच्छे अच्छे भोजन करना कोई पाप नहीं है, भोग लगा के प्रसाद खा सकते हैं। लेकिन इतना सादगी का जीवन जीकर अपने गुरु की इच्छा के अनुसार जन कल्याण के लिए बचपन से अपना निजी आनंद को त्याग करते हुए केवल अध्ययन 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 करके श्रीमद् भागवत के संदेश को विश्व भर में पहुंचाने के लिए जीवन समर्पित करने की भावना निर्माण होना इतने युवा और छोटी अवस्था में, ये सामान्य नहीं, राधा रानी की कृपा का परिणाम है। और वो भी बार बार इसको जानते हैं, ऐसा नहीं कि वो अपने आप को महान समझते हैं कि देखो इतनी छोटी उम्र में मैं साध्वी बन गई या विदुषी बन गई, कोई गर्व नहीं है, कोई एकदम डाउन टू अर्थ है। तो ये राधा रानी के विषय में हमको समझना है तो ये हमारे जीवन में परिवर्तन होना चाहिए। कैसा है ना, उनकी कृपा इतनी महान है कि वो कृपा को झेलने के लिए भी पात्र होना चाहिए ना। जैसे वो एक ब्रजवासी है उधर, राधा वल्लभ जी के आचार्य हैं, वो कहते हैं कि ये तो शेरनी को दूध है, शेरनी को हर आदमी पचा नहीं सके, हर आदमी पी नहीं सके, या को ऐसे बोलते हैं। तो शेरनी का दूध मतलब क्या, ये शेरनी का दूध जो है ना वो इतना तेज होता है, तो केवल शेर शेर उसके बालक के लिए होता है वो, और कोई पी नहीं सकता है। उसका पात्र भी जो है ना वो ऐसा होना चाहिए कि वो पात्र भी गल जाएगा। वो ऐसा हो सकता है काव्य में बातें हो, ये हो सकता है वास्तविकता हो, लेकिन कहने का तात्पर्य है कि शेरनी का दूध हर कोई नहीं पी सकता है। वैसे राधा कृष्ण के विषय में अनुभूतियां सबको, हर सबको नहीं हो सकती है, उसके लिए योग्य पात्र होना चाहिए। तो हम लोग कभी भी इन सब चीजों को बिना पात्रता प्राप्त किए प्राप्त करने का प्रयास नहीं करना चाहिए। ये तो कृपा है, ये हमारी साधना का बल नहीं है। जब जब हमारी जितनी जितनी पात्रता हो जाएगी उतना उतना राधा रानी हमको देगी, हमको विश्वास रखना चाहिए इस बात पर। जा जाकर छीन छीना झपटी करके उसको लेने का प्रयास नहीं करना चाहिए, अवैध मार्गों से, वैध मार्ग से जो भी हमको दिया गया है, क्योंकि तो अल्टीमेटली राधा रानी की कृपा प्राप्त करने का एक ही राजमार्ग है, वो है गुरु मुखा पद्म वक्या चित्ते ते कोरिया ऐक्य आरना कोरी हो मने आशा। ये राधा रानी के पूर्ण कृपा को प्राप्त करने का राजमार्ग है, रहस्य है पूरा, गुह्यतम रहस्य ये। तो गुरु तत्व पर पूर्ण श्रद्धा, गुरु के प्रति पूर्ण समर्पण, उसकी आज्ञा के लिए जीवन दान, आराधना करियो और कोई अन्य इच्छा नहीं, अन्य अभिलाषिता शून्यम, ऐसे करके जो अपने गुरु जी की सेवा करता है, भले बर्तन मांजता होगा मंदिर में गुरु जी की आज्ञा से, भले प्रचार करता होगा, बड़े बड़े प्रवचन देता होगा, भले कोई और ईट ईट गिनता होगा किसी कंस्ट्रक्शन के काम में, जैसे प्रभुपाद जी के सन्यासियों को प्रभुपाद ने लगाया था वृंदावन में, अरे संन्यास लिया हमने भजन करने के लिए, अभी ईटे ईटे गिन रहे हैं हम लोग, कारोबारों का कारीगरों का हाजिरी लगा रहे हैं, ये कैसे भक्ति है। तो प्रभुपाद जी ने समझाया उनको, ये तो माया में नहीं थे, लेकिन ये प्रश्न किया था उन्होंने कि संन्यास लेकर हम लोग ये कंस्ट्रक्शन का काम कर रहे हैं। अरे गुरु जी की आज्ञा, स्वयं भक्ति सिद्धांत सरस्वती ने कारीगरों की सेवा की थी उधर अलालनाथ में मंदिर बांधने के समय, गंधर्विका का मंदिर बांधते समय। तो सेवा कोई ऊंची नीच नहीं होती है, सेवा का भाव ऊंचा और नीचे होता है, और राधा रानी उसी भाव से रिझती है। हम जा जाकर उनके सामने खड़े रहेंगे, बार बार नाचेंगे और पूछेंगे कृपा करो कृपा करो, उससे कृपा नहीं होती है। कृपा गुरु जी की आज्ञा पालन करने से होती है, राधा रानी उसी से रिझती है। और समय आने पर उनके सामने नाचना भी चाहिए कीर्तन में, वो कोई बुरी बात नहीं है, लेकिन केवल उनके सामने जा जाकर गिड़गिड़ाने से ही कृपा प्राप्त होगी, ये समझ जो है ना वो गलत है। और ये भी कि उनके सामने जाकर गिड़गिड़ाना नहीं चाहिए, उनके सामने गिड़गिड़ाना चाहिए, याचना करनी चाहिए, रोना चाहिए, नाचना चाहिए कृपा की याचना करते हुए, लेकिन उसकी नींव जो है वो गुरु की सेवा है, वो उसका फाउंडेशन है, उसी फाउंडेशन में नृत्य करेंगे तो कृपा ही कृपा होगी हमारे साथ। तो हमें भी अभी इतने साल जाने के बाद भी डर लगता है बिना काम के वहां जाने के लिए, बिना सेवा के, बिना प्रयोजन के वहां जाने के लिए। ऐसा नहीं कि चलो भाई 8 दिन जाकर एक कुटी में जाकर भजन करते हैं, डर लगता है क्योंकि वो मुमकिन नहीं है। जहां पर गुरुजी ने कहा गया है वहीं पर रहकर हमको सेवा करनी है, मन चाहे कुछ भी कहेगा, गुरु की कृपा के बिना कुछ नहीं करना है, गुरु ने जहां कहा है वहां रहना है, अगर उन्हें कहा है धाम में रहो तो धाम में रहना है। कुछ भक्त लोग धाम में रहते हैं, वो आए हॉस्पिटल चलाते हैं उधर, उनको गुरु जी की आज्ञा है, पूरी कृपा लेकर गए वो, तो उनका पतन नहीं हुआ कभी, कोई भ्रष्ट नहीं हुए वो, कोई भ्रमित भी नहीं हुए, कष्ट बहुत प्राप्त किया उन्होंने, हमारे भक्तों ने भी, हमारे गुरु भाइयों ने भी, क्योंकि तो ब्रज है ही ऐसा, ब्रज व्यक्ति है, ब्रज बहुत डायनेमिक है, बहुत चलायमान है, इट्स वेरी डायनेमिक सिचुएशन। वो जो ब्रज का आश्रय लेता है राधा रानी की कृपा से, उसका पूरा जो कलमश है ना, वो पूरा स्क्वीज करके निकाला जाता है, जैसे कोई फोड़ा होता है ना, पीप भरा हुआ, बवाद भरा हुआ, तो उसको जब स्क्वीज करते तो बहुत दर्द होता है, लेकिन उस दर्द के माध्यम से क्या होता है, वो मवाद जो है वो निकल जाता है, और जो ठाके मारते हुए दर्द होता है ना, वो सब खत्म हो जाता है, लेकिन उस मवाद को निकालने की जो प्रक्रिया है वो बहुत दर्दनाक होती है। वैसे किसी को तो गुरु जी की आज्ञा के बिना राधा रानी की कृपा नहीं होती है, और वो अगर हो भी गई और ब्रजवास मिल भी गया, तो ब्रज ब्रज ये जो वस्तु है, यानी ये जो चेतन चेतन वस्तु है, स्थान है, ये व्यक्ति रूप में, व्यक्तिगत रूप में, खुद व्यक्ति रूप में और व्यक्तिगत रूप में पर्सनली उस भक्तों की शुद्धकरण के लिए बहुत फास्ट ट्रैक में काम करते हैं। परम पूज्य राधानाथ महाराज ने कहा था, जब मैं वहां पर ब्रज में था 1992 में, कहते हैं ब्रज एक ऐसी चक्की है जो बहुत फास्ट पीसती है, बहुत दर्द होता है उसमें, वो पीसती है, और जो पीसती है तो बहुत महीन पीसती है, और ब्रज की चक्की में कोई आएगा तो पीस तो जरूर जाएगा, लेकिन निकलेगा बाहर बहुत महीन शुद्ध भक्त बनकर निकलेगा, लेकिन वो पीसने का जो कष्ट है वो सहन तो करना पड़ेगा ना। जो आमतौर पर बंबई शहर में, इधर शहर में, वो अपने स्पीड में उसका शुद्धिकरण काम होता है, लेकिन ब्रज जो है ना वो एक्सेलरेटेड, यानी कि वो बहुत गतिमान शुद्धिकरण प्रक्रिया है वहां पर। तो राधा रानी की कृपा, ये विषय समझना भी बहुत कठिन है, और वो कृपा का पूरा रहस्य गुरु जी के अंदर छुपा हुआ है। इसलिए कभी कभी भक्त लोग सोचते हैं कि अरे क्या हमारे गुरु जी राधा रानी के बारे में बात ही नहीं करते हैं, उनके लीलाओं के रस के बारे में विचार नहीं करते हैं, कोई कथा नहीं बताते हैं उसकी, खाली वो आई एम नॉट दिस बॉडी, आई एम स्पिरिट सोल, यही बताते रहते हैं। यहाँ पर तो रस की तो योजना है ही नहीं, यहाँ पर रस मिलता ही नहीं है इस्कॉन में, ऐसा लगता है लोगों को, और कुछ लोग छोड़ के चले जाते हैं, क्योंकि उनको बहुत अच्छी कथा बताने वाले लोगों के बीच जाने को अच्छा लगता है, और वो अच्छी अच्छी कथा बताने वाले लोगों के पीछे जाना भी बहुत कठिन है, क्योंकि वो भी बहुत कष्टमय जीवन जीते हैं, बहुत तपस्वी जीवन जीते हैं, उनके साथ रहना भी इतना आसान नहीं है, वो लड्डा लड्डू हलवा पूड़ी खाकर वो साधना नहीं करते हैं इस कथा को सुनाने के लिए। हमको कथा सुनते समय भी लड्डू हलवा का प्रसाद चाहिए, तब हमारा कथा भी हमको मीठी लगती है, नहीं तो कथा भी हमको बहुत अच्छी लगती नहीं, नींद आ जाती है, बोर हो जाते हैं। तो ये सब जो बातें हैं ना, वो कोई भौतिक स्तर की बातें नहीं है, दिव्य स्तर की बातें हैं। दिव्य स्तर की बातें, राधा रानी की कृपा दिव्य स्तर की बात है, वो समझने के लिए दिव्य स्तर पर तो जाना पड़ेगा पहले साधना करके। इसके आगे कथा याद आती है नाग बाबा की। हाँ, तो अपने गौड़ीय संप्रदाय की कथा भी होगी, तो भी लोकल जो बाबा है बहुत पुराने, 400 साल पहले, नागा बाबा, चतुरा नागा बाबा, ऐसे विभूति थे वो कि वो हर रोज 84 कोस की परिक्रमा दौड़ कर लगाया करते थे, एवरी सिंगल डे 84 क्रोशर्स, जो लोग 40 दिन में करते हैं पैदल में, ये एक दिन में उनका नियम था कि इस मंदिर में मंगला करनी है, उस मंदिर में राजभोग की आरती करनी है, उस मंदिर में उत्थापन की आरती करनी है, फिर शयन आरती इस मंदिर में करनी है। मुझे वो सिक्वेंस बराबर याद नहीं, लेकिन वो एक दिन में 4 बजे आरंभ करते थे भागना, और पूरा बरसाने से शुरू करते थे, पूरा वृंदावन गोवर्धन पूरा थुरा करके वापस रात को बरसाने पहुंचते थे। तो जो भी लोग उनको जानते थे वो उनको केवल दौड़ते हुए देखते थे, बस केवल ऑल टाइम रनिंग, बिकॉज उनको तो पूरा परिक्रमा करने के लिए दौड़ना तो आवश्यक था ही। और केवल उनका ये वहम नहीं था, वो बहुत ही बोनाफाइड था जो करते थे, वो गुरु जी की आज्ञा में करते थे, और कोई ऐसा घमंड भी नहीं था कि हम इतना बड़ा तपस्या कर रहे हैं, कि हम इतना बड़ा महान व्यक्ति हूं, दुनिया में कोई ऐसा व्यक्ति नहीं जो मेरे जैसा रोज 84 कोस की परिक्रमा करता रहे, अकेले थे वो। और सब ब्रजवासी जानते थे कि ये ऐसा व्यक्ति है कि हमेशा दौड़ते हुए ही मिलता है, बस खड़ा है, मिलेगा तो इस मंदिर की मंगला में, या इस मंदिर की राजभोग आरती में, इस मंदिर की उत्थापन आरती में 4:30 बजे वाली, और इस मंदिर के शयन आरती में मिलेगा, फिर रात को बहुत ही कम समय विश्राम करेगा। तो एक दिन क्या हो गया, उन्होंने अपनी परिक्रमा शुरू की और उनकी ना बहुत लंबी जटा हुआ करती थी। ये जो परिक्रमा करने का आरंभ होने के पहले बहुत दिन वो अपने गुरु के आश्रम में रहे, कोई बरसाने के बहुत झाड़ी के अंदर है, और वो बड़ी जटा थी उनकी, बहुत थर से ऊपर बहुत जाती हुई, उस पर भी बर्तन लेकर जाते थे आते थे, साधुओं की सेवा करते थे। तो वो जटा को लेकर वो भागते थे, तो एक बार भाग रहे थे तो भागते भागते बरसाने के अंदर ही कुछ ही अंतर में उनकी जटा जो है एक वो पीलू के झाड़ के झाड़ी के अंदर अटक गई। आपने देखा होगा बरसाने में वो पीलू के झाड़ होते हैं, राधा रानी को बहुत प्रिय है। खैर, राधा रानी को चीकू बहुत पसंद है, अनार बहुत पसंद है और अरबी बहुत पसंद है, अरबी की सब्जी, और ये पीलू का पेड़ भी बहुत पसंद है, जो केवल ब्रज में आता है और कहीं राजस्थान में भी आता है लेकिन और कहीं नहीं आ सकता है। हमने भी वो गोवर्धन को विलेज में लाने का प्रयास किया था लेकिन उन्होंने कहा कि ये आ नहीं सकता है, किधर भी राजस्थान वृंदावन जैसे एरिया में आ सकता है बस, इसलिए सभी पेड़ लाए गोवर्धन इको विलेज में लेकिन पीलू का पेड़ नहीं ला सके। एनीवेज, तो वो पीलू का पेड़ कैसा होता है, उसकी बहुत छोटी छोटी उलझी हुई झाड़ी होती है, उसकी कौन सी शाखा कहाँ जाके कहाँ उलझ रही है, पूरा मैश मैश होता है, मैश नेटवर्क। तो उस झाड़ी में, गर्द झाड़ी में उसकी जटा अटक गई और वो निकल ही नहीं रही है, ऐसे फंस गई कि वो बाबा उधर खड़े हो गए, बस अभी खड़े हो गए, बहुत कोशिश किया, हिलने रहे तो खड़े हो गए, ठीक है राधा रानी की इच्छा है तो खड़े हो जाएंगे। सब लोग पूछ रहे बाबा कहाँ है गो, उलझा, तो कुछ नहीं बोल रहे, किसी को जवाब नहीं दिया, क्या हुआ, सब देख रहे जटा उलझ गई है। एक दिन गया बजट पूरा, सब लोगों ने आते जाते 50 प्रश्न किए, कुछ नहीं बोले, आखिर में बोलने लगे, जिसने उलझाई है वही सुलझाएगा। तो लोग समझ में नहीं पाए किसने सुलझाई है किसने उलझाई है। 3 दिन हो गए वहीं पड़े रहे, खाना नहीं पीना नहीं सोना नहीं कुछ नहीं, खड़े होकर भजन कर रहे हैं, बस राधा रानी को पुकार रहे हैं, नाम नाम ले रहे हैं उनका, भजन कर रहे हैं। तो तीसरे दिन कृष्ण जो है वो स्वयं वहां पर श्याम सुंदर जी बालक बनकर प्रकट हुए, बोले बाबा कहाँ हरे हुए, मैं सुलझा दूं जटाओं को। तो बाबा बहुत चतुर थे, उनका नाम बाद में पड़ा है चतुरा नागा, और समझ गए कि कृष्ण आ गए हैं। हाँ, और कृष्ण आ गए हैं तो उन्होंने कहा कि नहीं नहीं वो तो मैं सुलझा दूंगा, अरे बाबा मैं सुलझा दूंगा। तो कहते नहीं, जिसने उलझाई है वही सुलझाएगी। कहने का मतलब कि अभी कृष्ण आए गए हैं तो जुगल जोड़ी के दर्शन होने चाहिए, क्यों यहीं पर मैं समाप्त करूं, तो मना कर दिया कृष्ण को उन्होंने। तो कृष्ण भी ऐसे क्या है, हेल्पलेस हो गए, असहाय हो गए। तो वो एक छोटे से टील के नीचे है, वो झाड़ी अभी भी है, उसको कदम खंडी कहते हैं, नागा बाबा की कदम खंडी। तो कृष्ण भगवान उस पहाड़ी पर चढ़े और चोटी पर जाकर उन्होंने राधा रानी को आवाज दिया, राधे राधे वृष भानु नंदिनी आ जाओ प्रिय। तो कहते हैं कि वो जहां खड़े थे ना वो शिला पिघल गई, क्योंकि तो बड़े प्रेम से राधा रानी को पुकारा, तो वो उनके चरणों के स्पर्श से वो पीला शिला पिघल गई, उनके चरण चिन्ह अभी वो शिला पर, वो पर्वत की चोटी पर है। फिर राधा रानी वहां प्रकट हुई और आई और कहा कि बाबा कहाँ है गो। तो कह रहे हैं कि आपने तो सुलझाई है, उलझाई है तो आप ही सुलझा दो। तो राधा रानी ने उनकी जटा प्रकट होकर कृष्ण की सहायता से उसको सुलझाई, मुक्त कर दिया, और वही के वही राधा कृष्ण के जुगल जोड़ी के दर्शन प्राप्त करके वो गोलोक धाम चले गए उसी दिन। तो यही इतनी सारी परिक्रमा लगाई जुगल जोड़ी के दर्शन करने के लिए, राधा रानी प्रसन्न हो गई, कृष्ण प्रसन्न हो गए, स्वयं आकर दर्शन दिए। तो आज भी उनका वहां पर बहुत सुंदर कुंड है, वहां पर उनका वो स्थान है जहां पर उनको झाड़ी है जहां पर वो जटा उलझी थी। ऐसे ऐसे बहुत सारे संत जिनको राधा रानी के दर्शन हुए हैं, बहुत सारे संत हैं। अभी राधा रानी के विषय में कुछ उद्बोधक कथाएं सुनना जरूरी है। जैसे जयदेव गोस्वामी जी, वो तो ब्रह्मचारी बनकर जगन्नाथपुरी आए थे, जगन्नाथपुरी में जगन्नाथ ने दर्शन दिया स्वप्न में, कहा कि अगले दिन आपके पास एक ब्राह्मण आएगा अपनी कन्या पद्मावती को लेकर, उसके साथ आपको विवाह करना है। तो स्वप्न में भी थोड़ा सा विवाद किया भगवान से, अरे मैं तो ब्रह्मचारी बन के लिए आया था, आप क्या। एनीवेज, तो भगवान की इच्छा, वो शरणागत थे बहुत, तो उन्होंने अगले दिन ब्राह्मण आया, ब्राह्मण को भी स्वप्न में आदेश दिया था, वो जाकर रोज रोज जगन्नाथ जी को पुकारता था, मेरी कन्या का विवाह करा दो। तो जगन्नाथ जी ने उनको स्वप्न दिया था कि मेरा एक भक्त ब्रह्मचारी जयदेव वहां पर आया है, उसके कुटिया में जाओ और अपनी कन्या अर्पण करो, वो स्वीकार करेगा। वैसे ही हुआ, विवाह हुआ, और फिर उनको आदेश हुआ जगन्नाथ द्वारा कि आप नवद्वीप चले जाओ। फिर नवद्वीप चले गए, राधा माधव जी प्रकट हुए उनके लिए स्वयं। ऐसे पद्मावती और जयदेव इतने श्रेष्ठ भक्त थे, मेरे ख्याल से 8वें सदवी में थे वो, चैतन्य महाप्रभु आने के कई सैकड़ों साल पहले। तो वहां पर उन्होंने वो दशावतार स्तोत्र लिखा, विशेष रूप से गीत गोविंद का लेखन उन्होंने नवद्वीप में किया। तो वहां पर चंपाहाटी नाम, उसको चंपाहाटी कहते हैं उस वन को, चंपक वन। तो उधर चंपा के फूल हुआ करते थे, उससे वो राधा माधव की सेवा करते थे। उसी उपलक्ष्य में उनको राधा माधव के दर्शन दिए थे और वहां पर बैठकर अपनी कुटिया में वो गीत गोविंद का लेखन कर रहे थे। वो फिर वही बात मैं कह रहा हूँ कि वो उनका लेखन जो था वो केवल कादंबरी नहीं थी, नॉवेल नहीं थी, सोच सोच कर बनाई हुई घटनाएं नहीं थी। उनको साक्षात दर्शन रोज अपने चेतना में, आत्मा में, आत्मा के पटल पर हुआ करता था। उसी को वो काव्य रूप में उतारते थे। साक्षात दर्शन जो रोज होता था, साक्षात्कार होता था, उसी को उन्होंने लिखा है, वही गीत गोविंद है। तो राधा रानी और कृष्ण जो थे वो उनके लिए नित्य रूप से वो उनको दर्शन दिया, लीला करते थे और लीला में दर्शन देते थे। तो एक दिन मग्न होकर लिखने वाले जयदेव जी महाराज बैठे हैं, निकले हैं, लिख रहे हैं। तो क्या लीला हो रही है कि राधा रानी रूठी हुई है। हाँ, क्या है ना, परस्पर श्रृंगार किया उधर घेवर बन में बैठकर, और दोनों का श्रृंगार पूरा हुआ और राधा रानी कहती है कि मेरा श्रृंगार का वर्णन करो। तो कृष्ण को उनका इतना सौंदर्य अच्छा लगा कि वो वर्णन नहीं कर पाए, लेकिन सोच रहे भी क्या करूं। अक्सर सौंदर्य का वर्णन ना तुलना से होता है, जैसे नाक जो है वो चंपा के कली की तरह है, और होंठ जो है वो बिंब फल की तरह है, दांत जो है वो मोतियों की तरह है। ऐसे एक एक वस्तु का, जो श्रेष्ठ वस्तु का वो तुलना करते, लेकिन राधा रानी का सौंदर्य को जो हम, जो भी हम तुलना करते हैं, वो तुलना की वस्तु तुच्छ हो जाती है उनके, वो तुलना होने के योग्य ही नहीं है वस्तु। लेकिन क्या करे, कुछ ना कुछ तो बेस्ट वस्तु का प्रमाण देना चाहिए कि भाई ये वस्तु से 1000 गुना अधिक तेजस्वी है। जैसे कि सूर्य के 1000 सूर्यों की अधिक तेजस्वी कृष्ण का शरीर था, राधा रानी का 1000 चंद्रमा के समान शीतल और प्रकाशित शरीर था। तो कुछ ना कुछ एक प्रमाण देना पड़ता है। तो कृष्ण को कहीं प्रमाण दिखाई नहीं पड़ा, तो उसने आकाश में देखा। तो संध्या हो रही थी उस समय, तो सूरज निकल, चंद्र निकल आ रहा था। उनको लगा वाह ये तो बढ़िया चीज है। तो उसने कहा कि आपका मुख कमल जो है इस समय चंद्रमा के समान लग रहा है। किसी भी पति ने, अगर पत्नी को बता दे तो इतना आनंद आएगा, वाह आज मैं क्या बनाऊं आपके लिए। लेकिन उम्मीद तो ये थी कि चंद्रमा की तुलना बनाने के करने के बाद में फिर वो खुश हो जाएगी, लेकिन वो बहुत अनपेक्षित रीति से रूठ गई और कहा कि आपने मेरी मुख कमल की चंद्रमा से तुलना की, ना बड़ा अपमान किया आपने मेरा, क्यों क्या हुआ। चंद्रमा में दाग है, हमारे सौंदर्य में कोई दाग नहीं है। चंद्रमा को ग्रहण लगता है, हमारे सौंदर्य में कभी ग्रहण लगता नहीं है। चंद्रमा बढ़ती घटती है, हमारे सौंदर्य में कभी घटन होती नहीं है, खाली बढ़ती रहती है, हमारी वृद्धि होती रहती है सौंदर्य में। चंद्रमा पर प्रकाशित है, हम तो स्वयं प्रकाशित है हमारा सौंदर्य। चंद्रमा पीछे बहुत सारे तारे लगे रहते हैं, चंद्रमा एक तरह से व्यभिचारिणी है। हम पतिव्रत्य से, हम चैस्टिटी से अलंकृत हैं, और लास्ट बात ये तो हम सब सहन लेंगे, कोई बात नहीं, लेकिन चंद्र, चंद्र में हमारी जो प्रतिस्पर्धी चंद्रावली है उसका आधा नाम चंद्र में छुपा हुआ है। तो चंद्रावली का आधा नाम जिसका है उस व्यक्ति से हमारे आप में तुलना की हम नहीं बात करेंगे। अगर रूठ कर चली गई वो, अभी वो बहुत लंबी कथा है, लेकिन वो रूठ रूठ कर, रूठ रूठ कर वो पहाड़ पर चढ़ दी गई, ललिता को भेजा गया बार बार, वो आवत जावत हार गई थी, मुझे तो गेंद बना दिया आपने खेल का, इधर से उधर टॉस कर रहे हैं, आखिर में चोटी पर पहुंच गई मान मंदिर के, रूठ कर बैठी हुई है वहां पर। फिर ललिता जी कृष्ण को लेकर जाती है। मुझे याद है 1986 में राधा रानी के बरसाने में जब पहली बार गए थे मान मंदिर में, तो राधानाथ महाराज जी ने वो लेक्चर दिया था कि कृष्ण को ललिता जी लेके गई, उसका दाहिना हाथ उसके बाएं हाथ से मिलाने का प्रयास कर, तो झिड़क दिया उस हाथ को। फिर कृष्ण को उस दिशा में ले गए जिस दिशा में उसका मुंह था, तो वहां अगर लेके गए तो राधा रानी ने इस तरफ मुंह फेर लिया। ललिता वुड टेक कृष्णा ऑन राइट साइड बिकॉज राधा रानी वाज लुकिंग ऑन राइट साइड, सो शी वुड टर्न हर फेस ऑन लेफ्ट साइड, देन कृष्णा वुड गो विद ललिता ऑन लेफ्ट साइड एंड शी वुड टर्न हर फेस ऑन अदर साइड, ऑपोजिट साइड, आई डोंट वॉन्ट टू सी योर फेस। हाँ, इतनी नाराज थी वो उस समय। अभी देखो जयदेव जी एक दर्शन कर रहे हैं और दिख रहे हैं, लिखते जा रहे हैं, देखते जा रहे हैं। एक समय ऐसा आता है कि अपना मोर मुकुट उतार कर राधा रानी के चरणों में कृष्ण भगवान रख लेते हैं, तभी भी वो नहीं मानती है। फिर कृष्ण भगवान अपना शीश, जो अभी मोर मुकुट से खाली हो गया है, वो शीश जाकर उनके चरणों में झुका देते हैं, फिर भी वो नहीं मानती है। फिर कृष्ण भगवान अपने दो नेत्रों से अनंत अश्रु धारा बहते हैं और अश्रुओं से उसको उनके पैरों का अभिषेक करते हैं, फिर भी नहीं मानते। फिर कृष्ण उनके चरणों में जो धूल है उसमें लोटपोट हो जाते हैं, फिर भी ये नहीं मानती है। अब ये जो दृश्य चार मैंने बताया आपको, वो जयदेव जी को सहन नहीं हुआ। बोले कि हमारे नाथ परम पुरुषोत्तम अखिलेश अखिल ब्रह्मांड नायक परात्पर भगवान गोकुलेश गोलोकेश्वर, हाउ इट इज पॉसिबल, कैसे हो सकता है ये, नॉट पॉसिबल। वो उनका ना दिमाग बहुत भारी हो गया इससे, जस्ट कुंट एक्सेप्ट दिस कि ये कैसे हो सकता है, हाउ दिस इज पॉसिबल। तो उन्हें कहा कि अभी मैं नहीं लिखूंगा, ये मेरे को देख के सहन नहीं हो रहा है, मैं अभी इसको लिख नहीं पाऊंगा, लिखना तो दूर है, मुझे अभी रेस्ट चाहिए, आई नीड रेस्ट। तो पद्मावती से कहा, पद्मावती मैं जा रहा हूँ गंगा जी में, ठंडे जल में स्नान करूंगा, दिमाग थोड़ा सा शांत करूंगा, विचार करके आ जाऊंगा। ऐसे ऐसे त्रस्त होकर चले गए वो, और चले गए और कुछ ही क्षण में लौट गए। लौट के आए और पद्मावती से कहा, पद्मावती बहुत भूख लग रही है, जल्दी जल्दी खाना बनाओ। तो पद्मावती ने कहा कि अभी लगाती हूँ। तो बनाया, वो भूख लगाया राधा माधव जी को और लेकर आए। तो उसको उतने समय में ये अपने ही लिखने वाले कमरे में, अंदर छोटे कमरे में गए और कुछ लिखा उसमें और लिख दिया उसको और बाहर आ गए, बोले अभी परोसो खाना। तो पद्मावती जी ने बहुत प्रेम से भोजन परोसा और जयदेव जी ने बहुत ही प्रेम से उसको पाया, मतलब मांग मांग पर ये बढ़िया है ऐसे करके बहुत ही प्रतिसाद देते हुए बड़े ही प्रेम से। देखो औरतों को जब भी कोई कहता है ना ये बहुत बढ़िया बना है, बहुत अच्छा है, और दे दो, तो बहुत खुशी होती है। वाले को माँ को जब भी हमको प्रोत्साहन देना होता है तो हमको इस तरह से करना चाहिए कि ये दे दो, ये अच्छा है, बहुत अच्छा हुआ है, ऐसे करके संतुष्टि देने तक पद्मावती को जयदेव जी ने भोजन किया। और कह रहे मैं जाता हूँ, फिर लौट के आता हूँ, वो फिर चले गए। ये सब करके चले गए और कुछ ही क्षण में फिर लौट के आए। बोलते पद्मावती भूख लग रही है, भोजन खिला दो। तो पद्मावती का आश्चर्य हुआ, अरे स्वामी अभी तो आप भोजन करके गए थे, अभी अभी तो परोसा था आपको, इतना दिल से आपने आज इतना संतुष्टि दिया आपने मुझे, इतना प्रसाद की प्रशंसा की आपने। तो कहते हैं कि मैं तो नहीं आया था, मैं तो जमुना जी में परेशान होकर गंगा जी में बैठा था, बहुत बार डुबकियां लगाई, सर संतन शांत नहीं हुआ, गर्म ही रहा मेरा सर। तो उनको यकीन नहीं हो, स्वामी आप कुछ गलत कर रहे हो, क्या हो गया आपको, आज आप कुछ त्रस्त दिखाई पड़ रहे हो, सुबह से देख रही हूँ आपको, क्या बात क्या है। तो बोल रहे कि क्या ऐसा आप कह रहे हो, मैं आया था, क्या किया मैंने बताओ। पर जब मैं आपने कहा मुझे जल्दी जल्दी भूख लग रही, तो मैंने कहा रुको भूख लगाती हूँ आपको, तुरंत खिलाती हूँ। उतने में आप अंदर गए और कुछ लिख कर आए और फिर आपने भोजन किया। अच्छा, तो भाग के अंदर गए, बोलो क्या लिखा। तो देखते हैं कि उनके जो अक्षर थे बहुत सुंदर अक्षर थे उनके भी, और वो हस्ताक्षर में लिखते थे अपने श्लोकों को गीत गोविंद के, उसके नीचे जहां पर लीला अटकी हुई है कि चार चीजें बताई मैंने आपको, मोर पंख का मुकुट चरण में समर्पित किया, उसके बाद शीश चरणों में झुका दिया, उसके बाद में अश्रु बहाए और चरणों को धोया, और उसके बाद में उस रज में चरणों के नीचे वाले लोटपोट हो गए। ये चार चीजें ना वहां पर वो लीला रुक गई थी, वो लिख नहीं पाए थे उसको। तो वो सारी बातें जो है ना, वो मोतियों जैसे सुंदर विशिष्ट अक्षरों में, बहुत ही सुंदर आकर्षक तेजस्वी अक्षरों में उस श्लोक को पूरा किया गया था। वो क्या लिखा था, देहि पाद पल्लवम उदारम, यानी उस कथा में, यानी उस काव्य में गीत गोविंद के, कृष्ण कह रहे हैं देहि पाद पल्लवम उदारम, आपके जो जो चरण कमल है उदार है, वो नए नए आए हुए पत्तों की तरह है, कोमल कोमल है, बहुत ही शीतल है, बहुत दयालु है, वो राधा रानी कृपा करके मुझे आप दे दो वो चरणों की, वो कृष्ण भगवान जो है वो याचना कर रहे हैं। देहि पाद पल्लवम उदारम और गरल खंडन, बहुत सारे श्लोक है, मुझे बायहाट नहीं है, लेकिन कहते हैं कि आपके विरह के, आपके मान के जहर को, हाँ गरल को मैं सहन नहीं कर पा रहा हूं, आप मुझे मुझ पर कृपा करो, मैं बहुत माफी चाहता हूं आपसे, मैंने आपकी मुख कमल की तुलना चंद्रमा से की, ऐसे याचना कर रहे हैं, और बाद में आप उनके चरण कमल की याचना कर रहे हैं। तो जयदेव जी देखकर हाँ भाग भाग के आए, अरे पद्मावती तुम कितनी भाग्यवान हो, साक्षात राधा माधव जी आज आपके यहाँ पर प्रकट हुए थे। साक्षात माधव जी ने आपके घर में आकर आपके हाथ से सेवा की है। और पद्मावती भी बेहोश हो गई ये सुन सुन करके। अरे वो तो साक्षात माधव जी कृष्ण भगवान थे। तो ये देखिए दो चीजों का लाभ जयदेव जी को हो रहा है। एक राधा रानी के विषय में जो सत्य है कि कृष्ण उनके चरणों में झुकते हैं, उसका साक्षात्कार राधा रानी के द्वारा कृष्ण ने आकर उनको कराया, दर्शन दिया उनको। और दूसरी कृपा, स्वयं कृष्ण आकर उन्होंने ये बात को स्वीकार किया और खुद लिखा, जो जयदेव जी लिख नहीं पा रहे थे। वो जो कुछ पंक्तियां हैं वो कृष्ण के द्वारा लिखी हुई है, कृष्ण ने इसको स्वीकृति दी है। उन्हें कोई परहेज नहीं है, कोई संकोच नहीं है, कोई उनके हमको ठेस लगती नहीं है कि लोग क्या कहेंगे। परात पर भगवान गोलोकेश्वर अपनी एक प्रेयसी के चरणों में झुक रहे हैं, कोई भगवान को संकोच नहीं है, क्योंकि राधा रानी उनके सर्वस्व है। राधा रानी के सेवक कहलाने में और सेवा करने में, उनके चरणों में लोटपोट होने में कृष्ण को कोई आपत्ति नहीं है। तो ये है राधा रानी, तो ये अनुभूति कराई जयदेव जी महाराज को राधा रानी की कृपा से हुई। और माधव जी ने आकर स्वयं अपनी स्वीकृति में, क्योंकि स्वीकृति तो उनको ही देनी थी ना, कि मुझे कोई संत नहीं है इस बात को, कोई आपत्ति नहीं है, ये जताने के लिए स्वयं माधव जी आए। उन्होंने वो श्लोक को पूरा किया। ऐसे जयदेव जी को राधा रानी की विशेष कृपा हुई। और अभी राधा रानी की शक्ति के बारे में हम चर्चा करेंगे। राधा रानी के अंदर क्या पावर है, महाप्रतापी कहा था उनको। देखिए प्रसंग ऐसा है कि कृष्ण ने गिरिराज को उठाया 7 दिन 7 रात तक। उसमें बहुत सुंदर लीला है, राधा रानी की नजरों के बल से उन्होंने गोवर्धन को उठाया। और आगे जाकर राधा रानी ने अपने नजरों से गोवर्धन को उठाकर दिखाया हुआ है ब्रजवासियों को। ग्वाल बालों ने प्रश्न किया था, कैसे हम लोग मानते नहीं है कि आपके नजरों से गोवर्धन को उठाया है। अभी तो कृष्ण गोवर्धन उठाए खड़े थे, तो अभी उसको सिद्ध कैसे करें। तो जब ये लीला समाप्त हुई, उसके बाद में ग्वाल बाल दोबारा गए और याद कराया, आपने कहा था कि गोपियों ने कहा था, आपने तो कहा था राधा रानी की नजरों के बल से गिरिराज को उठाया था उन्होंने, अभी आपके नजरों से उठा के दिखाऊं। तो राधा रानी ने केवल नजर को जमीन को लगाया और नजर उठाई तो गोवर्धन आकाश में चले गए। कृष्ण की तो ऊंचाई तक ही गए थे वो, हाथ जहां तक ऊंचा था, राधा रानी की नजरों से आकाश में चले गए गोवर्धन। और जब तक वो ऊपर देखते उस तक ऊपर ही वो, जब बाल बाल संतुष्ट हुए तो उन्हें कहा रख दे नीचे, तो नजर को नीचे लाया और गोवर्धन को वापस विराजमान करा दिया। ये एक उनकी शक्ति है। कृष्ण भी कछु माखन को बल कछु ग्वालन को सहाय, यानी कुछ माँ के माखन का बल, कुछ ग्वाल बालों के बल, लेकिन सबसे बड़ी जो है वो राधा रानी की दृष्टि, कृपा कटाक्ष, उसकी शक्ति। एनीवेज, तो ये सब लीला हुई तो 84 खंभा में सब ब्रजवासी गण चर्चा कर रहे थे। अरे नंदा नंद बाबा, तुम्हारा बालक तो बहुत ऋषि है, मुनि है, कोई सिद्ध बाबा होगा, कोई देवता होगा ऐसे। एनीवेज, वो बड़ी लंबी कथा है। उनकी चर्चा जो है इतनी रोचक चर्चा है, वो इतनी सुंदर चर्चा है। वहां पर एक तो ऐश्वर्य का प्रभाव होने का प्रयत्न किया जा रहा है कि तुम्हारा बालक कोई महान व्यक्ति है, और हर एक ऐश्वर्य को नंद महाराज खंडन कर रहे हैं। ये कैसा देवता है, ये तो चोरी करता है, कोई देवता चोरी करता है, ये सिद्ध बाबा कैसे हो सकता है, इसको अपने इंद्रियों में जरा भी नियंत्रण नहीं है, और ये महाऋषि कैसे हो सकता है, अरे बादल में गड़गड़ाहट होने से डर जाता है, ये माँ की गोद में जाकर छुप जाके स्तनपान करता है। ऐसे करके जितना जितना ऐश्वर्य का बखान किया गया, उतने उतने माधुर्य के प्रभाव से नंद बाबा ने उसको पूरा तोड़ दिया उस बात को। और सब लोग ना ऐसे पेट पकड़ पकड़ कर, पकड़ पकड़ कर हंस के ऐसे जमीन पर गिर लौटपोट होने लगे। ऐसे ऐसे बातें नंद महाराज ने बताई तो इनको कृष्ण के विषय में इतनी हंसी आई, इतना विनोद हुआ कि वो अपने पेट को पकड़कर दुखते हुए जमीन पर जाके लेटपोट होके हंसते रहे। फिर नंद बाबा ने कहा, ऐसे सहजता से कहा, बहुत ही सहजता से नंद बाबा ने कहा कि हाँ, गर्ग मुनि ने तो कहा था कि आगे जाकर ये गिरिधारी बनेगा और गोवर्धन को उठाएगा। सबकी आंखें एकदम स्थिर हो गई, सबके कान खड़े हो गए। अब तक सब लोग हंस रहे थे, बहुत ही वातावरण लाइट था, हंसी मजाक का था, प्रेम का था, कृष्ण के प्रति माधुर्य से भरा हुआ था। अचानक सारा वातावरण गंभीर हो गया और कुछ बाल बालों ने प्रश्न किया, गर्ग मुनि कब आए थे यहां पर? तो अभी नंद महाराज फंस गए, क्योंकि गर्ग मुनि जब आए थे तो कहा था कि किसी को नहीं कहना है, कंस के भय के वजह से मैंने नामकरण किया है, किसी को नहीं बताना है, ऐसे वसुदेव जी का आदेश है, इसलिए गौशाला में केवल नंद बाबा, रोहिणी, देवकी, कृष्ण, रोहिणी, वशोदा, कृष्ण कृष्ण बलराम और नंद बाबा, इसके अलावा कोई मनुष्य जीव वहां पर नहीं था, बाकी सब गचरे और गाय थे और गर्ग मुनि नामकरण करने वाले पुरोहित। और ये बात सबसे गुप्त की गई, किसी भी तरह से फैल फैल कर कंस के कानों तक पहुंचनी चाहिए कि गर्ग मुनि जो वसुदेव के पुरोहित हैं उन्होंने किसी बालकों का नामकरण किया, मतलब उसके जो गायब हुए बालक है वो ब्रज में नंद बाबा के पास है, फिर उसको मारने के लिए वो प्रयास करेगा। ये बात जाहिर हो जाए कि जो गुप्त थी कि वसुदेव के दो बालक नंद बाबा के पुत्र बनकर वहां पर, तो इन सब बातों को गुपित रखने के लिए ये सब लीला हुई थी। और गर्ग मुनि ने चेतावनी दी थी कि किसी को नहीं बताना है, और अब तक इस चर्चा तक इस बात को उन्होंने छुपाए रखा था, गुप्त रखा था। अभी बातों बातों में कृष्ण के गौरव के माहौल में अचानक उनके मुंह से ये बात निकल गई और सारी सभा क्रोधित हो गई। और सब लोग ऐसे क्रोधित हो गए, तुम अपने आप को, हमको सबको अपने भाई समझते हो, बिरादरी के लोग समझते हो, और हमको ये इतनी बड़ी बात बताते नहीं हो कि गर्ग मुनि आकर नामकरण लेकर चले गए। हम आज आप राजा हैं लेकिन हम हमारी बिरादरी से आपको रस्टिकेट कर देते हैं, बरी कर देते हैं। नहीं चाहिए ऐसा हमको राजा जो झूठ मूठ के रिश्ते का और प्रेम का बातें करता है और वो ऐसी ऐसी बातों को छुपा के रखता है। तो उसमें फिर भिष्मानु महाराज खड़े हो गए, अच्छे मित्र थे महाराज के। मुझे हमेशा लगता है कि यही पारिवारिक वातावरण है, दिस इज अ फैमिली एटमोस्फेयर ऑफ वृंदावन। हाँ, अपना दोस्त अभी कष्ट में आने वाला है, संकट में पड़ा है, तो तुरंत उसका दोस्त खड़ा हो गया और कहने लगे देखो आप समझा करो, कितनी संकोच वाली बात थी, कितनी संकट वाली बात थी, कृष्ण बलराम की सुरक्षा उधर कष्ट में थी, तो आप समझो वो जानबूझ के नहीं किया, ऐसे संतों के आशीर्वाद से, उनकी इच्छा से उन्होंने ऐसा किया, वो आपको वो बात छुपाने का काम नहीं था उनका। तो लोग इतने भड़के हुए थे, उन्होंने कहा ग्वाल वालों ने, अरे विश्वानु को भी निकाल दो, ये नंद के साथ उसको भी निकाल दो, इसका पक्ष लेता है ये। तो जब वृषभानु महाराज को निकाल दो ऐसी बात हुई, तो एक तीसरा ग्रुप खड़ा हो जाता है उधर ब्रजवासियों का, कहता है अरे इतना क्रोध मत करो, ये वृषभानु को निकालने की बात मत करो, इसकी कन्या जो है ना वो महाप्रतापी है, इसलिए यहां पर अभी कंस का कोई आदमी और कंस कभी आया नहीं है, ये समझ लो इस बात को। इतने क्रोध के आवेश में आकर वृषभानु को अगर निकालने की बात करोगे तो कन्या भी जाएगी उसकी, और कन्या जाएगी तो कंस आएगा, तो बोला कैसे ये मुमकिन है। तो उन्होंने फिर कथा बताई, एक भानोखर नाम की जगह है बरसाने में, हाँ बहुत सुंदर, उधर जल महल बना हुआ है, उधर वृषभानु महाराज अपनी पत्नी को लेकर, परिवार को लेकर, सखियों को लेकर, सखाओं को लेकर, वो जल के अंदर ही महल बना हुआ है पूरा, उसके नीचे भी जल है, उसमें गर्मी के समय पर ठंडक हवा हवा महल, हाँ बैठते थे वहां पर। आज भी बहुत सुंदर स्थान है वो, ब्रज फाउंडेशन ने उसका जीर्णोद्धार किया है, बहुत सुंदर बना के रखा है, विशाल कुंड है। तो वो राधा रानी, क्योंकि वो तो राजकन्या है, राजा का कुंड है वो, भानुखर वृषभानुखर है वो, उसके आगे कीर्तिदा कुंड है, तो उसमें वो स्नान करती थी। हाँ, तो स्नान करने के समय काले घोड़े पर बैठकर कंस आया, क्योंकि उसी समय वो गोकुल से और रावल से शिफ्ट हुए थे बरसाना और नंदगांव में, तो उधर राक्षस गया तो कोई मिला नहीं, तो खबर दिया कि सब कोई है नहीं वहां पर, तो पहले तो हाऊ बिलाव को भेजा उन्होंने, तो हाऊ बिलाव पत्थर बन गए, वो तो लंबी कथा है छोड़ो उसको। फिर वो आश्चर्यचकित होकर कंस बोला मैं खुद जाके देख के आता हूँ, तो खुद काले घोड़े पर बैठकर वहां पहुंचा, वो भानुखर पहुंचा, तो राधा रानी को बड़ा क्रोध आया उसको देखकर, उसने कहा अरे उदंड पापी यहां पर क्यों आए हो। हाँ, तो उसने कोई जवाब नहीं दिया, वो कृष्ण को ढूंढ रहा था। तो राधा रानी की इच्छा से ना उसने कहा तू स्त्री हो जा, तो क्या कहें, राधा रानी के केवल कहने मात्र से कंस जो है ये बड़ी मोटी स्त्री बन गया और उसका घोड़ा भी घोड़ी हो गया। सोचो आप, अब ऐसा संकोच हुआ कंस को, इतना बड़ा अभी क्या कहें आपको, पूरा कई अध्याय है कंस के शक्ति और पराक्रम और गौरव के विषय में, क्या क्या कंस ने किया था, कितना महान, रावण हिरण्यकश्यप से भी अधिक पराक्रमी था वो। रावण तो वो राम का जो धनुष था ना, स्वयंवर का, सीता का शिव धनुष, उसको हिला भी नहीं सका था, और परशुराम ने फेंका हुआ जागृत विष्णु का धनुष कंस ने झेल लिया था और 100 बार उसको प्रत्यंचा चढ़ाई थी उसने, इतना बलवान था वो, इतना महान वीर था वो। तो इतना महान वीर, इतना गौरव प्राप्त, तो सारे राक्षसों को वश पे कर रहा था वो, अचानक भानुखर में बरसाना में कन्या हो गया वो, और सभी गोपियां जो स्नान कर रही थी वो चिड़ाने लगे, ए मुटल्ली गोपी, ए मुटल्ली गोपी, ऐसा करके चिड़ाने लगे उसको। इतना संकोच हुआ, वापस जाने के लिए भी संकोच है कि लोग क्या कहेंगे वहां पर, और यहां पर सब लड़कियां हंस रही है, राधा रानी ने, गोपियों ने उसको ना मिलकर 6 महीने उससे कंडे लिपवाए। उसका मतलब क्या होता है? गौशाला साफ करना, गौमूत्र गोबर को इकट्ठा करना, उसको टोकरी में डालना, उसको जाकर पर्वत के पास कहीं टील के पास बैठना और वो थापना उसको कंडा कंडा, और थाप के उसको लगाना, फिर उसको सुखाना, फिर सुखाने के बाद में उसको इकट्ठा करना, फिर टोकरी में डालना, फिर टोकरी में जाकर वो जो उसका घर होता है कंडों का, बहुत गोबर से ही बनता है, बहुत सुंदर घर व्यवस्था होती है गाँव में, उसमें रखना, फिर गाय का दूध निकालना, स्नान कराना, बछड़ों को स्नान कराना, ये सब कुछ, दही मंथन करना, और सब कुछ उसको 6 महीने तक कराया। एक विशेष बात है इसके अंदर संबंधित, जैसी वो ये है कि वो तो अनायासी गोपी बन गया था, है ना, और हम सब लोग साधना करते हैं गोपी भाव प्राप्त करने के लिए। उसको तो ऐसी कृपा हुई थी उसके ऊपर, क्यों तो बिना कुछ किए ही पाप करके ही वो ऐसे ही बड़ी असीम कृपा हुई उसके ऊपर, वो तो गोपी बन गया। हाँ, जो गोपियां रोज गीत गाते हुए प्रेम से कृष्ण की याद करते हुए, मैया यशोदा मैया कीर्ति मैया सारी प्रभावती गोपियां सारी मिलकर वो रोज प्रेम से गाय का दूध निकालती है, प्रेम से दही मंथन करती है, प्रेम से कंडे बनाती है, प्रेम से गौशाला साफ करती है, अपने जीवन को धन्य मानती है, उसमें मग्न रहती है, सब कुछ भूल जाती है। हाँ, ऐसा सारा भाग्य कंस को प्राप्त हुआ था, और कंस वही चीज कर रहे थे सारी गोपियां कर रही थी। लेकिन फर्क क्या है? फर्क है चेतना का, उसकी चेतना बड़ी विपरीत थी। हाँ, हिज कॉन्शियसनेस वॉज कंप्लीटली अनफेवरेबल फॉर द मर्सी ऑफ राधा एंड कृष्णा, इसलिए परम कृपा होने पर भी उसका वो लाभ नहीं ले सका। रोता रहा 6 महीने, आंखों से आंसू बहाकर गिड़गिड़ाता रहा, मुझे मुक्त करो मुक्त करो मुक्त करो। हाँ, आपको अगर कोई गोपी बना देगा तो आप थोड़ी बोलेंगे मुक्त करो मुक्त करो, आप बोलेंगे लॉटरी लग गई आपकी, बिना कुछ योग्यता के गोपी बनने का मौका मिला। सीधे गोपियों के साथ उसी गौशाला में वो गोपी भी दूध निकाल रहे हैं, मैं भी निकाल रहा हूं। हाँ, तो मोस्ट इंपॉर्टेंट स्पिरिचुअल लाइफ में क्या है ना, कॉन्शियसनेस है, चेतना है। इसलिए मैं कहता हूं कि बड़ी से बड़ी कृपा राधा रानी के प्राप्त होने पर भी अगर योग्य चेतना नहीं रही तो उसका परिणाम विपरीत होता है। बी केयरफुल, सर्वोच्च अनुभूति भी आपको प्राप्त हुई लेकिन हमारी चेतना हमारा पात्र उसके लिए अनुकूल नहीं है। हाँ, योग्य नहीं है, इतना बड़ा नहीं है जितना उसको झेल सके, तो मिलने पर भी उसकी उसका नुकसान ही होता है। इतनी बड़ी कृपा प्राप्त होने पर भी कंस जो है वो 6 महीने रोता रहा और कंडे लिपता रहा। उसके बाद वृषभानु महाराज आए, तभी वो कहते हैं कुशरी कुंड के पास थे, और कंस जो है ना वो वृषभानु महाराज के पास गिड़गिड़ाए। अभी देखो पोजीशन क्या है, ये नंद महाराज और वृषभानु महाराज ना हर साल नियमित रूप से कंस को महाराज के रूप में दंडवत करने और टैक्स चुकाने जाते थे, कर चुकाने, यानी कि उनके महाराज है, वो वंदनीय पूजनीय महाराज है, आदरणीय महाराज है, और ये महाराज यहाँ पर कन्या बन के खड़े और रो रहे हैं और गिड़गिड़ा रहे हैं, राधा रानी के चरणों में गिर गए वो कंस। अभी वो कंस नहीं, गोपी मोटल्ली गोपी है, ए मोटल्ली गोपी चल काम कर, इतनी मोटी हो गई है थोड़ा सा कंडे लिपेगी तो थोड़ा वजन कम हो जाएगा, ए मोटल्ली गोपी, ऐसे करके गोपियां मजाक कर रही है उसके साथ। तो फिर क्या हुआ, ये वृषभानु महाराज को दया आ गई, क्यों जानते हैं ना हमारे महाराज है ये, भाई इतने संकुचित अवस्था में है, देखो बेटिया माफ कर दो उनको। तो राधा रानी उंगली उठाई, हाँ उंगलियां चलाई, बोले दोबारा यहाँ पर आओगी ना तो परमानेंट कन्या बना दूंगी, याद रखना, कभी दिखना नहीं चाहिए यहाँ पर। पुलिस कैसे बोलती है, पूरे बंबई शहर में कोई दिखना नहीं चाहिए यहाँ पर दोबारा एक बार, ऐसे चेतावनी दिया। हाँ, एकदम फिल्मी स्टाइल में, अभी इस मेरे कुंड में कूद कूद जा, और कूद कर पुरुष शरीर प्राप्त करेगा तो घोड़ा का लेकर, घोड़ा को लेकर कूदा, घोड़ी, अभी घोड़ी बनी थी ना, तो तत्काल पुरुष शरीर प्राप्त हुआ और चेतावनी दिया दोबारा आओगे तो जिंदगी भर कन्या बनकर रहोगे। तो वो गीले कपड़े में पुरुष शरीर दोबारा प्राप्त करके ऐसा भागा कंस, मथुरा तक भागा, पीछे मुड़कर भी नहीं देखा। अरे पीछे मुड़ के देखेगा स्वामिनी का दिल बदले हो जाएगा, तो वापस कन्या बनाने का मूड करेगा, तो वापस कन्या हो जाऊंगा, अति महाप्रतापी है ये कन्या, इच्छा मात्र से मैं कन्या बन गया, कोई सर्जरी नहीं किया मेरे ऊपर, केवल इच्छा किया और मैं कन्या बन गया। 6 महीने तक तड़पता रहा यहाँ पर, सब भाग गया, दोबारा कभी लौट के नंदगांव बरसाना जावट के एरिया में वापस लौट के नहीं आया। तो ये कथा कौन सुना रहे हैं, वो थर्ड ग्रुप सुना रहे हैं। अरे इनको भगाने की बात मत करना, इनकी कन्या महाप्रतापी है, उसके होने से हम सब लोग यहाँ राक्षसों के आतंक से बचे हुए हैं, ध्यान रखना। ये कथा सुनाने के बाद में सब शांत हो गए, सबने विश्वानु को, नंद महाराज को गले लगाया, हाँ समेट कर दिया पूरा, समझ गए कि भाई ठीक है, इमरजेंसी थी आपकी, कोई प्रॉब्लम नहीं है, कोई बिरादरी से निकालने की बात नहीं कर रहे हैं। तो ये इसको विस्मय कथा कहते हैं। हाँ ये कृष्ण के विस्मयकारी जो गोवर्धन उठाने का क्रिया था उसके विषय में चर्चा हुई इसके अंदर। तो उसी में ये कंस की कन्या होने की बात आई है, कंसनी गोपी की बात आई है, और उसके बाद में सब शांत हो गया। तो समझना यह है कि राधा रानी महाप्रतापी है, कृष्णा बहुत शक्तिमान है, लेकिन कंस फिर भी उसमें इतनी हिम्मत थी कि वो बार बार आक्रमण करके कृष्ण को मारने का बार बार प्रयास कर रहा था। कितनी बार लोगों को भेज के प्रयास किया, फिर उसको यहां मंगा कर प्रयास किया, और आखिर में भी भयात कंसात, हाँ भय के माध्यम से कृष्ण को प्राप्ति किया उसने, ये कहा गया है शास्त्र में, भागवत में भी लिखा है। लेकिन फिर भी उसने तलवार निकालकर, ढाल निकालकर कृष्ण पर आक्रमण करने का प्रयास किया था, लेकिन सच है उसको राधा रानी का, राधा रानी का नाम लेके भी डरता था वो, क्योंकि तो उसने मुझे 6 महीने तक गुप्त रूप में कन्या बनाया था, किसी को पता नहीं है, ब्रजवासी लोग, अच्छा हुआ यहां पर आके बताए नहीं, और मथुरा में अगर पता चलता तो मेरी क्या होती, मेरी क्या इज्जत होती वहां पर। ये 6 महीने जाकर गोपी बनकर कंडे लिप के आया है हमारा महाराज, क्या मेरी रहती उनके सामने इज्जत, ऐसी विशेष बात। हाँ सच्चा भय उसको राधा रानी का था, और फिर उसके बाद में दुय्यम भय था वो कृष्ण का था, लेकिन वो भय होने पर भी उसने प्रतिकार जरूर किया था, ऐसी हमारी राधा रानी। तो इसको हमको सीखना यह है कि बड़ी से बड़ी कृपा होती है, फिर भी हम योग्य नहीं रहेंगे तो उस कृपा का पूरा लाभ नहीं होता है। जैसे हमारा पात्र अगर 1 लीटर का है और 10 लीटर अगर दूध उसमें डाला जाए तो 9 लीटर दूध बह जाएगा, और जितनी हमारी क्षमता है उतना ही हम ग्रहण कर पाएंगे। इसलिए अपनी आध्यात्मिक क्षमता योग्यता बढ़ाने का प्रयास करना चाहिए गुरु की आज्ञा पालन करके और अच्छी साधना करके, और जैसी हमारी क्षमता बढ़ेगी उतने ही पर्याप्त साक्षात्कार हमको मिलते रहेंगे, और जो हमारी क्षमता नहीं है, योग्यता नहीं है, उसके परे जाकर कुछ प्राप्त करने का प्रयास हमको नहीं करना चाहिए। और एक बहुत उद्बोधक कथा है, वो है चित्रपट लीला। तो चित्रपट लीला ऐसी है कि सुदामा जो श्रीदामा थे ना, उनको नारद मुनि ने आशीर्वाद दिया था कि तुम, जैसे वो लीला हुई ना राधा रानी को मिलने गए थे वो, तो फिर वो सुदामा को सामने किया कि लड़की तो नहीं, लड़का है हमारे पास, वो सुदामा थे। उसके बाद में जब दोबारा गए कि नई नई लड़की हुई है, उस समय उन्होंने सुदामा को आशीर्वाद दिया था कि सुदामा तुम कृष्ण के बड़े ही प्रिय सखा बनोगे। तो जितने प्रकार के सखा थे, समवयस्क, प्रिय नर्म सखा, नर्म सखा, इन सभी कैटेगरीज में भी वो सर्वोच्च और सर्वप्रिय मित्र थे कृष्ण के। इतना प्रेम करते थे कृष्ण के ऊपर कि शाम होते होते रोना आरंभ करते थे। क्यों? क्योंकि अभी गौचारण तो हो गया, अभी शाम को घर जाने का समय हो गया, अभी रात भर विरह में लेना पड़ेगा। तो बहुत रोते थे, रोना आरंभ करते थे, रात भर रोते थे, रात भर उसको नींद नहीं आती थी, कृष्ण के विरह में इतना व्याकुल होते थे। तो एक दिन कृष्ण से कहा उन्होंने गौचारण ने, देखो कृष्ण जो है ना, अब तो मैं आपके साथ में हूं, दिन में बहुत आनंद आ रहा है, लेकिन रात को ना मैं मृत्यु समान हो जाता हूं, शरीर छूटेगा ऐसा लगता है मुझे, इतना मुझे आपका विरह होता है कि मैं सहन नहीं कर पाता हूं। कृष्ण एक कृपा करो मुझ पर, आप कम से कम आपका एक चित्रपट दिया करो, मैं जानता हूं रात को हम आपको मिल नहीं सकते, लेकिन आप मुझे कम से कम आपका एक चित्रपट दे दो। तो पहले कृष्ण ने उसका मजाक उड़ाया, तो लेकिन वो बहुत ज्यादा रोने लगा, तो कृष्ण को कि गंभीर बात है भाई, मजाक की बात नहीं है, है ना। तो उस समय वो कृष्ण अपने मैया के पास गए, बोला मैया मेरा दोस्त है ना, आप जानते हो राधा रानी का भाई है, बहुत मेरे से प्रेम करता है, रात को बहुत तड़पता है मेरे लिए, वो एक मेरे चित्रपट की मांग कर रहा है, मैया एक चित्रपट की व्यवस्था करो मेरे। तो मैया के, मैया भी अपने मूड में है, मैया भी, मैया कहती है कि अरे तुम्हारा चित्रपट निकालना है तो कौन सी बड़ी बात है, एक कागज ले लो, एक ब्रश ले लो, काला रंग ले लो, दो चार स्ट्रोक मार दो, उसके ऊपर हो गया आपका चित्रपट। अब सामले हो, दो चार ब्रश मार दिए तो आपका चित्र हो गया। तो मैया रोने लगा कृष्ण, बोले मैया मजाक मत करो, मैं गंभीरता से बात कर रहा हूँ, मेरा दोस्त मरने की बात कर रहा है, तुमको मजाक सूझ रहा है। तो माता भी गंभीर हो गया, अच्छा ठीक है कोई बात नहीं, अभी करती हूँ व्यवस्था। तो मैया ने चित्रा सखी को बुलाया। हाँ चित्रा सखी धर्म भानु की बेटी है, और धर्म बहुत धर्म भानु के पंडिता हैं, बहुत पंडित हैं, बड़े विद्वान हैं, तो ये भी बहुत धर्म की तत्पज्ञ हैं, जानती हैं धर्म के तत्वों को। ये पामिस्ट्री है ना, हस्तसागरिक, उसमें भी बहुत कुशल है, ये भविष्य में भी कुशल है बहुत, एस्ट्रोलॉजी। और चित्रा सखी का और भी गुण ऐसा है कि वो वृक्षों को संवारने में, मेंटेन करने में बहुत एक्सपर्ट है, वनों को संवारने में बहुत एक्सपर्ट है, और पक्षियों की सब भाषाएं जानती है ये, और पक्षियों को भी ये वृक्ष पालन में, और पक्षियों को भी उसमें सेवा में लगाती है संभाषण करके, और चित्रपट निकालने में बहुत एक्सपर्ट है। आगे मैं कथा समाप्त करने के पहले और बताना चाहता हूँ कि आज विशाखा का भी जन्मदिन है और चंपक लता का भी जन्मदिन है राधा रानी के साथ, वो भी कुछ वाक्य बताऊंगा उसके बारे में। तो चित्रपट बनाने में भी बहुत कुशल है, इसलिए राधा रानी नहीं सॉरी यशोदा मई ने चित्रा सखी को बुलाया। तो यशोदा मैया बुला रही है कुछ सेवा के लिए, तो बहुत भाग्यवान समझकर भागी वो। तो मैया ने कहा, देखो मेरे लाला का चित्र बनाना है आपको। तो फिर वो बोली, अपने आप को भाग्यवान समझ के, बहुत जल्दी मैं अभी बना के लाती हूँ, कोई चिंता मत करना। तो वो वापस चिकसोली यानी चिकित्सकपुर यानी जहाँ पर हम लोग कैंप करते हैं उस गांव में आई, और सब साहित्य इकट्ठा किया। और चित्रकार कैसे करते हैं, चित्रकार ना समझो आपका चित्रपट निकालना है तो आपको ऐसे बिठाएंगे, ऐसे एक जगह, बोला हिलना नहीं यहाँ से, ऐसे देखना, इस तरफ देखना, ऐसे देखना बस, और उसको आप स्थिर रहेंगे और वो बोर्ड पर चित्रपट निकालेंगे। वो चलते फिरते घूमते हुए आदमी का, चलायमान व्यक्ति का चित्रपट नहीं निकाल सकते, उनको किसका भी चित्रपट निकालना, अगर निकालना सीन तो स्थिर होता है, लेकिन व्यक्ति का चित्रपट निकालना है तो व्यक्ति एक स्थिर जगह पर स्थिर पोज में होना चाहिए, एक मुद्रा में, एक अवस्था में होना चाहिए। तो अभी कृष्ण तो है नहीं, तो अभी वो मन में किसी छवि को बसाना है और उस छवि पर ध्यान करते हुए उस छवि को उतारना है चित्रपट के रूप में। तो वो अभी मन में ध्यान लगाकर बैठ गए, भाई एक छवि को मन में फिक्स करती हूँ अभी। तो क्या हुआ, एक बड़ा आश्चर्य हुआ, उसके मन में अनंत कृष्ण की छवियां एक साथ प्रकट होने लगी, एक पर मन लगाया दूसरी, फिर तीसरी, फिर चौथी, फिर पांचवी, ऐसे अनंत कृष्ण की छटाएं अलग अलग भाव में, कभी हंस रहे हैं, कभी मजाक कर रहे हैं, कभी चोरी कर रहे हैं, कभी कुछ कर रहे हैं, कभी गा रहे हैं, कभी नाच रहे हैं, ऐसे अनंत मुद्राएं उसके मन में प्रकाशित हो गई और वो बहुत परेशान हो गई। अरे मुझे इतनी बढ़िया सेवा मिली, इतनी बड़ी कृपा से प्राप्त हुई है और मेरे मन में एक एक छवि ही स्थिर नहीं हो पा रही है, क्या बात है, क्या ऐसा दुर्भाग्य है मेरा। तो अपनी सखियों को बताया उसने कि देखो ऐसे ऐसे मुझे सेवा प्राप्त हुई है लेकिन मुझसे नहीं बन रही है सेवा। तो सखियों ने कहा, राधा रानी से कृपा ली क्या आपने, उनसे आज्ञा ली क्या आपने। तब चित्रा सखी को ध्यान में, अरे मैंने राधा रानी की कृपा तो लिया ही नहीं, यशोदा ने मुझे मुझे सेवा दी, इससे इतने में भावुक हो गई, इतनी भावा भाव विभोर हो गई कि मैं मूलभूत बात को भूली गई कि मुझे राधा रानी की कृपा आज्ञा लेनी है। तो भाग राधा रानी के पास जाती है और पूरा प्रसंग समझाती है कि ऐसे ऐसे हुआ है, मुझे इतनी बढ़िया सेवा मिली है, राधा रानी आप कृपा करो, आप आशीर्वाद दो। राधा रानी तथास्तु के आशीर्वाद देती है, और राधा रानी के आशीर्वाद देते ही चित्रा सखी के मन में एक सुंदर, एक ही मनमोहक छवि स्थिर हो जाती है, और उस मनमोहक स्थिर छवि पर ध्यान करते हुए चित्रा सखी बहुत ही जल्द कृष्ण का बहुत सुंदर चित्रपट बनाती है और लेकर भागती है, यशोदा मैया को देती है, यशोदा मैया तुरंत कृष्ण को बुलाती है, कृष्ण को देती है, कृष्ण तुरंत उसको अपने दोस्त को देते हैं। और उस चित्रपट को देखते हुए कुछ कुछ अपने विरह की अग्नि में सांत्वना पाते हैं श्री दामा जी। पूरा तो नहीं हो सकता है, चित्रपट तो चित्रपट होता है, चलायमान नहीं होता है, कृष्ण तो कृष्ण है, बहुत चंचल है, व्यक्ति है, आनंद देने वाले, लेकिन फिर भी कृष्ण के छवि को, जैसे अभी लॉकआउट का टाइम है ना, हम मंदिर में जा सकते नहीं, तो मंदिर का चित्रपट हम टीवी पर देखते, हमारे लैपटॉप पर लगाकर जप करते हम लोग, कल भी किया था, आज भी किया, राधा रानी का चित्रपट देखते हुए। क्या करें, वो तो पूर्ति नहीं होती उससे, लेकिन फिर भी कम से कम कुछ भी ना देखते हुए चित्रपट तो देख रहे हैं, कम से कम उनकी याद तो आ रही है, चरणों की याद आ रही है, मुख कमल की याद आ रही है, वो भी ठीक है। तो ऐसा ही मानकर उसके रात के लॉकडाउन में सीतामा उस चित्रपट को देखा करते थे, अपने अपने वियोग की अग्नि को थोड़ा थोड़ा ठंडा किया करते थे। ये कहानी हमारे लिए समर्पक कैसी है, देखो जब तक राधा रानी की कृपा नहीं होती है तब तक हमारा कार्य सफल नहीं होता है, और वो कृपा गुरु जी के माध्यम से आती है। कोई भी बड़ा कार्य आपको मिलता होगा लेकिन आप गुरु की आज्ञा कृपा नहीं लेंगे तो कितना भी भाग्य आपका होगा वो सिद्ध नहीं होगा। जैसे कितनी भी बढ़िया सब्जी बनेगी आप उसको नमक नहीं डालेंगे तो उसमें वो स्वाद नहीं आएगा, कितना भी बढ़िया माल डाला होगा आपने उसके अंदर, लेकिन बिना नमक के जो दिखता भी नहीं है लेकिन वो बिना नमक के वो सब्जी सिद्ध नहीं हो सकती है, परिपूर्ण नहीं हो सकती है। वैसे वो बिना राधा रानी की आज्ञा लिए कोशिश कर रही थी कि इतना भाव जानबूझकर नहीं, भाव विभोर होकर ऐसे वो भूल गई थी कि अरे पूछना चाहिए, फिर सखियों ने याद दिलाया। तो क्या इंपॉर्टेंट है, सत्संग जरूरी है। अगर हम भाव विभोरता में अनजाने में गलती भी करेंगे ना, अगर सच्चे प्रामाणिक भक्तों का संग होगा ना तो हमको जागरूक करेंगे, बेटा भैया गलती कर रहे हो, ये करो ये नहीं किया तुमने। सत्संग कितना महत्वपूर्ण है, सत्संग हमें गुरु तक पहुंचाएगा और गुरु हमको सही रास्ता दिखाएंगे, तब जाकर हमारा कार्य सिद्ध होगा। अगर सत्संग के बिना, गुरु की कृपा के बिना हम सोचेंगे हम यशस्वी हो जाएंगे, बहुत बड़ी गलत फहमी है वो हमारी जीवन की। तो इस चित्रपट लीला के माध्यम से हम ये समझ सकते हैं। देखो कैसा है, एक बार कैंप में गया था बहुत पहले 92 साल में, तभी 2-3 दिन उसके बाद में रुका था, तो ये उधर रासलीला चल रही थी। रासलीला का मतलब ड्रामेटिक्स चल रहा था, नाट्य महोत्सव। तो उसमें मंच पर मैंने ये चित्रपट लीला देखी थी, इस संत के कविता में उसको वर्णन किया गया था, तो वो उन्होंने वो मंचन किया था उसका, वो कहीं भी लिखी नहीं है, मैं केवल वो लीला देखी थी, उसके श्लोक वोक सब गायन में सुने थे और वो मुझे भगवान की दया से आज भी याद है। और इसका मूल संदेश जो है वो सत्संग, अच्छे भक्तों का संग, सलाह परामर्श और गुरु की आज्ञा, ये इसका सार है कथा का। तो आइए इस राधा रानी के दिव्य तत्व को समझते हुए हम ये प्रयास करें कि इसको सामान्य स्तर पर ना ले, साधारण स्तर पर ना ले। डोंट टेक इट चीपली एंड डोंट टेक इट फॉर ग्रांटेड। ये बहुत ही उच्च और महान वस्तु है राधा रानी की कृपा, और तत्व भी बहुत महान है। कृष्ण भी स्वयं भ्रमित और लालायित रहते हैं इसके लिए। तो सबसे बड़ी राधा रानी की कृपा का जो मार्ग है वो है हमारी साधना बड़े हृदय से करना। जो भी संघ हमें प्राप्त हुआ है उसमें संतुष्ट रहना। ये मत समझना कि अरे पुणे में अच्छे डिवोटीज नहीं है तो बंबई में है, अरे बंबई नहीं है वृंदावन में है, वृंदावन नहीं हो अमेरिका में है। तो हमारे पास जो संघ है वो हमको हमेशा लगता है अच्छा नहीं है, और जो दूर है वो अच्छा लगता है, और दूर जो लोग रहते हैं उनको लगता है वहां अच्छा नहीं है यहाँ अच्छा है। जो बंबई में रहते हैं उनको लगता है कि बंबई का संघ है ना वो माहौल अच्छा नहीं, जो दिल्ली में रहेंगे वो लगेगा कि अरे दिल्ली का जो संघ है ना वो ठीक नहीं है, बॉम्बे में सत्संग करेंगे तो अच्छा है, पुणे में करेंगे तो अच्छा है, और पुणे के लोग कहेंगे नहीं नहीं बंबई में बहुत अच्छा है। तो समझने वाली बात है कि जो संघ हमें भगवान ने अभी दिया है सांप्रत काल में, वर्तमान काल में, वो हमारे लिए टेलर मेड है। भगवान की परिपूर्णता पर संदेह मत कीजिए। भगवान ने आपको जो भी सत्संग दिया है, आज भक्तों का संग दिया है, वो आपके आध्यात्मिक उन्नति के लिए परिपूर्ण है। तो उस संगति में पूर्ण विश्वास रख के, भगवान की योजना समझकर, उनके संगति में प्रामाणिक साधना, गुरु जी की आज्ञा के रूप में पालन करना, गुरु जी की दी हुई सेवा को करना, इसी से कृपा आती है। और जिस जगह पर आपको सेवा करने का आदेश दिया गया है, फॉर एग्जाम्पल कुछ लोगों को आदेश दिया कि जेल में जाकर कैदियों को प्रचार करो, इतनी भयंकर जगह है वो, लेकिन जिस जगह पर हमारी सेवा होती है या सेवा करने का काम होता है वो स्थान को प्रभु दत्त देश कहते हैं। और प्रभु दत्त देश यानी गौलोक वृंदावन और सारे तीर्थ वहां पर इकट्ठा होते हैं, सारे धाम तीर्थ प्रकट होते हैं उसी जगह पर जहां पर हम लोग अपने गुरु की आज्ञा का पालन करते हैं। यही संदेश है राधाष्टमी का, राधा रानी की कृपा प्राप्त करने का, अपने दिए हुए भक्तों का संग करना, भगवान का नाम गुरु द्वारा दिया हुआ है उसका दिल से उसको पुकारना, उसका नियमित रूप से जप करना, भक्तों के सामने नम्र रहना, अपने जीवन को भक्तों की सेवा में समर्पित करना, इसी के माध्यम से दिव्यतम अनुभूतियां राधा रानी के विषय में हमारे जीवन में प्रकट होगी। हरे कृष्णा। बहुत बहुत धन्यवाद सबका। कोई प्रश्न होंगे तो उसका उत्तर देने का प्रयास करेंगे।
कृष्ण
यस प्रभु जी,
क्योंकि वी हैव अराउंड 9 क्वेश्चंस हियर।
यस यस नो प्रॉब्लम। हरी
वेल रेक्टर, थैंक यू फॉर द वंडरफुल क्लास यू शेयर्ड प्रैक्टिकल रियलाइजेशन।
हाँ बोलते रहिए। यस
फर्स्ट क्वेश्चन प्रभु जी, there are so many deities in ISKCON. In all the deities, they have like there are different names of Krishna and different name, but there are no different name for Radharani. For example, Radha Vandavan Chandra, Radha Kunja Bihari, Radha Madhav, etc. Why it is so? Radharani also has many names, but only Radha name is used in names of deities.
नहीं नहीं ऐसा नहीं है. It's not that ठाकुर भक्ति सिद्धांत जी has made गंधर्वी का गिरिधारी टेम्पल नालाल नाथ. It's not absolutely true. The general trend is like that. And I may not be able to explain that question to you, but I know that it's not an absolute situation. There are deities which are, like I told you, Gandharvika Giridhari, which are named different for Radharani also. I will ask my Gurudev and find out why it is so. Interesting question. And I don't claim to be knowing all answers to all questions. Next
question. दूसरा प्रश्न है, अगर कोई व्यक्ति ऐसे कहते हैं, कोई व्यक्ति अगर निधि वन में जाता है रात में रासलीला देखने के लिए, तो शायद वो मानसिक रूप से उसका मानसिक स्थिति खराब हो जाता है या फिर कुछ तो उसके साथ खराब होता है.
तो
क्या ये सच है?
प्रश्न क्या जाना है उधर आपको? प्रश्न है
क्या ये सत्य है?
देखिए ये वही पात्र अपात्र की बात है ना. निधिवन वो स्थान है जिसमें आज भी प्रत्यक्ष नित्य रासलीला होती है, और रात को जब भी सूर्यास्त होता है ना, अंधेरा होता है ना, तो वहां से बंदर और चींटी भी निकल जाती है बाहर. एक भी दिन भर इतना आतंक रहता है, रात को आपको एक बंदर एक चींटी भी नहीं मिलेगी, एक कीटक भी नहीं मिलेगा, एक पक्षी नहीं मिलेगा. आसमान खुला है ऊपर, क्योंकि वो भगवान का दिव्य लीला का संकेत है, और आज भी वहां पर लीला होती है. रात को शयन आरती में, अभी अभी मैं गया था कुछ दिन पहले, मतलब आई कैंप के बाद में, तो हमने वो रात की शयन आरती कराई थी, और शयन आरती में हमने भोग लगाए थे, लड्डू वड्डू जो भी है, पान बीड़ा जल दूध, और उस फूलों की सेज बनाई वहां पर शयन के लिए. और सुबह हम लोग को वो जो मनोरथी थे उनको मंगला में बुलाया था, हम 4 बजे मंगला में गए थे 3:30 को, और जब दर्शन खोला गया तो वो लड्डू जो है वो खाए खाए मिले हमको, खाए अधिक थोड़े थोड़े खाए हुए, दूध कम मिला, और जो फूल रखे थे बिस्तर पे वो सब ऐसे क्रम्पल्ड थे जैसे किसी ने यूज किया हो उसको, बिस्तर जो था बना बनाया उसको पता चल रहा था कि किसी ने उसका उपयोग किया हुआ है. तो ये आज भी सत्य है, अभी श्रद्धा की बात है. तो एक अंग्रेज डॉक्टर था, उसको ये पता चला कि ऐसे ऐसे यहाँ पर होता है, और वहां पर रात को किसी को रुकने देते नहीं, सबको ना ढूंढ ढूंढ के बाहर निकाल लेते हैं, क्योंकि वैसे आगंतुक होते हैं आतंकवादी कोई लोग जो रात को छुपकर वहां पर सब लीला को देखना चाहते हैं. तो वो डॉक्टर था ना, वो सबको उल्लू बनाकर वो रात को वहां पर छुप गया. मेडिकल डॉक्टर था वो, विदेशी, तो वो छुप गया, तो सुबह वो मरा हुआ मिला. और ये भी सत्य है. क्यों मरा हुआ है? कि वह 3 चीजें होती है, या तो वो देखने का प्रयास करने वाला व्यक्ति जो है अंधा हो जाएगा, या तो उसको हो जाएगा पैरालिसिस, लकवा मर जाएगा उसको, या तो वो मर जाएगा. ये 3 चीजें, जैसे पिसाया में भी ऐसी चीजें, जो कोई लकड़ी को ले जाएगा वहां पर अपने इंद्रिय भोग के लिए, तो लकड़ी अगर पिपासा बन सके उठाएगा बरसाने से, तो वो अंधा होगा, लकवा मारेगा और मर जाएगा. ये आज भी सत्य है, मैंने अपने आंखों में आए कैंप में देखा है. तो क्यों होता है ऐसे ये? क्योंकि वहां पर भगवान की दिव्यतम प्रात पर लीला होती है, और अपात्र व्यक्ति, कुपात्र व्यक्ति अगर वहां जाकर उस पात्र बनने का प्रयास करता है, उसको दंड मिलता है उसको. मैं बार बार यही बात कह रहा हूं कि कृष्ण की लीलाओं को पात्रता न होते हुए ग्रहण करने का प्रयास मत करो. जब पात्र हो जाएंगे तो जहां बैठे ना आप, वहां पर आपको दर्शन देंगे भगवान. कितने संतों का उदाहरण है, ब्रज के कितने संत हैं जिनको घर बैठे झोपड़ी में बैठे हुए रास के दर्शन हुआ करते थे. कितने संत हैं ऐसे, एक नहीं अनंत संत हैं. हमारे भी रूप गोस्वामी, सनातन गोस्वामी, कृष्णदास को, इनको सबको दर्शन हुए भगवान के. नरोत्तम दास ठाकुर जी जब कहते हैं ना, वो वृंदावन रम्य स्थान तार मध्य हेमपीठ अष्टदल वेष्टित, ये सब उन्होंने देखा है. वो कहीं उधर निधिवन में जाके छुपकर नहीं बैठे थे देखने के लिए. उनके दिल की पात्रता इतनी श्रेष्ठ थी कि उनको जहां पर बैठे वहां पर ठाकुर जी आकर साक्षात्कार कराते थे, दर्शन कराते थे अपनी. तो कभी भी ऐसा प्रयास नहीं करना चाहिए. सच है, बिल्कुल सच है. हरे कृष्णा.
क्या कोई व्यक्ति वृंदावन में जाके फ्लैट लेके वहां पर रह सकता है?
वृंदावन में जाकर फ्लैट लेकर रहना बिल्कुल मुमकिन है, लेकिन वो करने के पहले अपने गुरु जी की आज्ञा लेनी चाहिए. क्योंकि ब्रजवास का मतलब ये नहीं कि आपके पास पैसे हैं और आप फ्लैट खरीद सकते हैं, फ्लैट का डीलिंग कर सकते हैं, आपको फ्लैट आपके नाम पे हो सकता है, इसका मतलब ब्रजवास नहीं है। ब्रजवास ये बहुत ऊंची चीज है। ब्रजवास के लिए उच्च चेतना की आवश्यकता होती है, सखी भाव की आवश्यकता होती है, शरणागति की आवश्यकता होती है, परम सहनशीलता की आवश्यकता होती है, और सबसे ऊपर गुरु के अनुग्रह की आवश्यकता होती है। इसलिए गुरु की आज्ञा के बिना अगर कोई जाकर वहां रहेगा, मुझे परम पूज्य राधानाथ स्वामी महाराज ने 28 साल पहले एक बात बताई थी कि जब गुरु जी के आज्ञा के बिना कोई भी ब्रज में जाकर रहता है तो उसको कण भर भी अनुभूति प्राप्त नहीं होती है। नो रियलाइजेशन विल बी अवेलेबल टू हिम, ही विल जस्ट बी स्टेइंग देयर लाइक एनी अदर मैन, लाइक सग स एव गोख रहा, वैसे ही रहेगा वो, खाना खाएगा पिएगा और गर्व करेगा कि मैं ब्रजवासी हो गया हूँ, मैं यह रहता हूँ, सब जानता हूँ, बांके बिहार की आरती कब है, यहाँ का दर्शन कब है, यहाँ पर कौन सा उत्सव है, वो सब उसको मालूम पड़ेगा, लेकिन हृदय में अनुभूति नहीं होगी। जैसे ब्रह्मा जी जब आए थे कृष्ण की परीक्षा करने के लिए, तो उनको वो वृंदावन में ही आए थे, लेकिन उनको वृंदावन का दर्शन नहीं हुआ था। जब वो नम्र होकर भगवान से शरणागत हो गए तो फिर हर वृक्ष उनको कल्प वृक्ष की तरह दिखाई पड़े, हर धेनु काम धेनु दिखाई पड़ी, और कृष्ण ने पूरा दिव्य दर्शन कराया। हाँ, श्रिया कांता कल्पद्रवो द्रुमा कल्पद्रुमा, वो जो श्लोक है ना, श्रिया कांता कांता कल्पद्रवो, वो जो श्लोक है ब्रह्म संहिता का, वो दर्शन ब्रह्मा जी को भी तब हुए जब कृपा हुई उसके उनके ऊपर, तो बिना गुरु जी की आज्ञा लिए हुए ब्रज में जाकर परमानेंट रहना ये अच्छा नहीं है। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि बुरा है। हाँ, कोई आप उधर लास वेगास में जाकर जुए की सिटी में नहीं रह रहे, उससे अच्छा है, लेकिन जो उससे प्राप्त हो सकता है ब्रज में रहकर, वो प्राप्त नहीं होगा। केवल निवास शरीर का होगा, आत्मा का निवास नहीं होगा, ब्रजवास नहीं होगा। आई होप इट इज क्लियर।
ये अगला प्रश्न है,
और कोई प्रश्न? आवाज
कंसा कंसिनी गोपी बनना, ये
नहीं आ
कृष्ण
रही,
का, हरे कृष्णा
आवाज नहीं आ रही।
हरे कृष्णा।
हाँ, बहुत कम आ रही है, बोलो। हाँ,
तुझे जो लीला आपने बताया था कि कंस का कंसिनी गोपी बनना, ये लीला का वर्णन कहाँ पे आता है?
गर्ग संहिता में दिया है, गर्ग संहिता में इस लीला का पूर्ण वर्णन दिया है। नेक्स्ट क्वेश्चन।
राधा रानी को ये जो नाम है हरा या फिर हरे, ये कहाँ से मिला?
प्रभु जी, आपकी आवाज बिल्कुल भी नहीं आ रही है, पहले अच्छी आ रही थी।
जी अभी ठीक है?
नहीं प्रभु जी,
हरे कृष्णा।
यस प्रभु जी, बोलिए, जोर से बोलिए।
ये अगला प्रश्न है कि राधा रानी को जो नाम है हरा या फिर हरे, ये कैसे मिला? इसके पीछे कोई लीला है क्या?
नहीं, देखो, राधा रानी के नाम सहस्त्र नाम है, अष्टोत्तर शत नाम भी है, अभी राधा नाम 40 का भी है, बहुत सारा कुछ है राधा रानी के विषय में, अलग अलग संतों के लिटरेचर में दिया गया है, लेकिन हरा ये नाम जो दिया गया है वो हरण शक्ति का, जिसके पास में है, जो हृदय को हरण कर लेती है, कृष्ण के भी हृदय को हरण कर लेती है, उससे उसका नाम हरा पड़ा हुआ। रूपा जी भी बता देना अपने अपने वर्णन में, शी इज हरा, वेन शी वी कॉल हर इज हरे, एंड वी कॉल हरे कृष्णा, देन राधा रानी कृष्णा गेट्स अट्रैक्टेड, ऐसा प्रभुपाद जी ने वर्णन दिया है ना, तो अनेक नामों से एक नाम है वो हरा देवी। यस
जी
प्रभु जी, नेक्स्ट।
अगला प्रश्न है, तिलक इज सिंबल ऑफ विष्णु एंड तुलसी, वाई कृष्णा वेयर्स इट? दस श्रीमती राधारानी ऑल्सो वेयर तिलक?
कृष्ण जो है ना वो तिलक पहनते हैं भक्तों के चरण के रूप में, उनके मन में ये भाव रहता है, भक्तों के मन में भाव रहता है कि वो कृष्ण के चरण कमल धारण कर रहे हैं, तुलसी के साथ जो भक्तों के भगवान के चरणों के तले होती है, और भगवान भी उसी भाव से भक्तों के चरण अपने सर पर धारण करते हैं, क्योंकि तो भगवान अपने भक्तों के भक्त हैं, मद भक्ता पूजा व्याधिका, ये उनका भाव है। राधा रानी तिलक धारण करती है, मेरे विचार से नहीं करती है, मैंने कभी भी राधा रानी के विग्रह पर तिलक लगाते हुए नहीं देखा है, और उसका कारण मुझे पता नहीं है, आई डोंट नो।
अभी क्या आप वो राधानाथ महाराज का जो लीला था जब महाराज बीमार थे अस्पताल में, राधारानी का
हाँ,
ध्यान दे
वो
रहे थे?
छोटी सी लीला है, महाराज जब अस्पताल में आए थे एक बार मार्च में, बहुत साल हो गए उसको, तो उनको निमोनिया हुआ था और वो 104 बुखार था उनको, और बहुत ही मतलब ही वॉज बर्निंग विथ फीवर। तो वो तीसरे माले पे रूम नंबर 3 में डिलक्स रूम में उनको एडमिट किया था मैंने। और जब मैं उनको मिलने गया था, मैं अकेले था, और अकेले गया था तभी महाराज एकदम बुखार में, कैसा होता है ना वो बुखार में एक भ्रमित अवस्था होती है, बहुत शरीर का तापमान बढ़ता है ना, तो यू गेट डेलीरियस, हाँ उन्माद कहते हैं उसको। तो जब महाराज के पास मिलने गया था तो मैं अकेला था, और मैं जब गया था तो महाराज उसी बहुत भयंकर बुखार की अवस्था में, और उस अवस्था में आम आदमी तो होता है उन्मादित यानी डेलीरियस, लेकिन वो संत हैं, परम भक्त, भगवान के परम भक्त है, तो वो अपने दिव्य चेतना में चले गए, और वो वृषभानुनंदिनी वृषभानुनंदिनी करुणामयी वृषभानुनंदिनी ऐसे पुकार रहे थे, वो ऐसे आर्त स्वर स्वर पर में, और मैं वहां बैठकर अकेले उस दिव्य वातावरण का, दिव्य चेतना का अनुभव कर रहा था। कह रहे मैं तो महाराज अभी दिव्य अवस्था में है, दिव्य चेतना में, दिव्य नाम पुकार कर रहे हैं और कृपा की याचना कर रहे हैं, ऐसा दिव्य भावना वहां पर प्रकट हो रही थी, और उसका साक्षी मैं केवल अकेला था। अपने आप को बहुत भाग्यवान मैं समझने लगा कि मैं ऐसे दिव्य अवस्था में महाराज के दर्शन कर रहा हूँ। उतने में मैं कुर्सी में बैठने गया तो कुर्सी का आवाज क्रिक आवाज हो गया, तो महाराज फिर वापस बाह्य चेतना में आए, वृषभानुनंदिनी ऐसे पुकार रहे थे। उतने में उनका वो बाह्य चेतना में आकर मुझे दिखा उन्होंने, और तुरंत वो जो प्रेम था वृषभानुनंदिनी के प्रति, जो वो पुकार के रूप में प्रकट कर रहे थे, तो तुरंत उसका रूपांतर करुणा में हुआ, और मुझे उन्होंने कहा कि विश्वरूप आई लव यू वेरी मच, विश्वरूप आई लव यू वेरी मच, बार 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 मेरा हाथ पकड़ के, उनका उष्ण गर्म हाथ था ताप बुखार का, इतने प्रेम से करुणामय आंखों से मुझे देख रहे थे और कह रहे थे विश्वरूप आई लव यू वेरी मच, आई लव यू वेरी मच, बस इतनी ही लीला है वो। यानी संतों के हृदय में जो भगवान के प्रति प्रेम होता है, वही प्रेम भगवान का करुणा के रूप में जीवों के लिए प्रकट होता है। तो उसका मैंने अनुभव किया कि हमारे गुरुदेव, सबके गुरुदेव इतने महान भक्त हैं, वो उनके मन में जो कृष्ण के प्रति प्रेम है, वो हमारे प्रति एक करुणा के रूप में प्रकट हो जाता है। हमारे लिए कितना आश्वस्त है, आश्वासन है ये, जब वो कहते हैं कि हम आपसे प्रेम करते हैं, इसका मतलब ये नहीं कि वो केवल मुझसे प्रेम करते हैं, वो सभी शिष्यों पर प्रेम करते हैं। मुझे उसमें गर्व की कोई बात नहीं कि मैंने ऐसा अनुभव किया और मुझ पर एक्सक्लूसिव प्रेम करते हैं, ऐसा नहीं। हर एक व्यक्ति जो उनके चरणों में शरण ग्रहण करता है, उन पर वो ऐसा ही प्रेम करते हैं। हो सकता है सबको बताने का अवसर, मौका न प्राप्त हो, किसी को प्राप्त हो, लेकिन वो अभी तक उन्होंने कई लोगों को बताया है कि आई लव यू बियॉन्ड एनी डिस्क्रिमिनेशन, जैसे हमारे कई भक्तों को उन्होंने बताया हुआ है। तो मेरे जीवन में ये प्रसंग आया, बस हरे कृष्ण।
ये अगला प्रश्न है कि कंस वाज सो ब्लेस्ड टू रिसीव द ब्लेसिंग ऑफ बीइंग अ गोपी फॉर 6 मंथ्स, डिड ही हैव अ चॉइस और ऑप्शन टू रिसीव कृष्ण प्रेम एंड बिकम डिवोटेड एट टाइम?
डेफिनेटली इज वेरी ऑब्वियस, अरे उस पर ऐसी कृपा हुई है बरसाना, जैसे अंतरंग स्थान पर। प्रश्न यह है कि शायद सुना नहीं पड़ा हो किसी को, तो कंस को ये मौका मिला था तो क्या उसको डिवोटी बनने का चांस था क्या? निश्चित रूप से, ये न केन प्रकारेण, जब ब्रजवास प्राप्त होता है, वो भी राधा रानी के धाम में प्राप्त होता है, वो राधा रानी की सखियां, सेविकाएं, सहचरियां, किंकरियां, जो दिन रात काम करती है आनंद के आवेश में आकर, वो करने का मौका मिला था। तो जैसे तटस्थ शक्ति होती है ना, उसे जैसे हम लोग हैं तटस्थ शक्ति भगवान की, हर समय ये चॉइस रहता है कि हम अंतरंगा शक्ति के शरण में जाएं या बहिरंगा शक्ति के शरण में जाएं, दैट चॉइस इज ऑलवेज गिवन टू अस। उसी प्रकार से कंस को भी मौका दिया गया था, इतना पापी था फिर भी राधा रानी की कृपा देखिए, राधा रानी ऐसे पापियों से पापियों को भी स्वीकार कर रही। हाँ, लाडली अद्भुत नजारा तेरे बरसाने में है, बेसहारे सब पापियों का सहारा तेरे बरसाने में है, सबको ग्रहण कर लेती वो, अश्वत्थामा को भी ग्रहण किया उसने, इतने पापी व्यक्ति। तो कंस को मौका तो दिया था, लेकिन मौका लिया नहीं उसने, उसकी राक्षसी चेतना जो थी ना, विपरीत चेतना, विनाश काल की विपरीत बुद्धि थी, इतनी कृपा प्राप्त होने पर भी वो उसके लिए तड़प दुखी होता रहा। दुर्योधन को भी कृपा प्राप्त हुई थी कि नहीं हुई थी? अरे भगवान ने तो सेवक बनकर, दूत बनकर याचना भी की थी उसके लिए, 5 गांव दे दो, तो बोलता है इसको अरेस्ट करो, ये चेटुक है, ये टोना करने वाला है, जादू टोना करने वाला व्यक्ति है। तो भगवान ने उसको विराट रूप भी दिखाया, जो अर्जुन को भी दिखाया था युद्ध में, उसको देखकर सब लोग ने तो प्रणाम किया था, अर्जुन ने प्रणाम किया था, और उस विराट रूप को देखकर भीष्मदेव, द्रोणाचार्य सब लोग ने प्रणाम किया था, लेकिन दुर्योधन की अकल नहीं सुधरी उसके अंदर। ईश्वर विराट रूप को देखने के बाद भी दुर्योधन की चेतना द्वेष पूर्ण होने की वजह से, इतनी कृपा होने पर भी वो उस कृपा से वंचित रहा, क्योंकि वो कुपात्र था। भगवान ने तो मौका दिया था उसको, भगवान ने तो उसको कितने मौके दिए थे, कितनी बार दिए थे, लेकिन कहते ना वो कुत्ते की पूंछ जो होती है ना, वो बार बार नली में डालने के बाद भी टेढ़ी रहती है, वैसे उसकी चेतना थी।
जी
और कोई
अभिषेक,
प्रश्न?
यस जी, एक प्रश्न लेंगे कि अभी अभिषेक का भी तैयारी चालू हो गया।
हाँ
राधा रानी सो मर्सीफुल, शी ऑलवेज ऑफर अस आर भक्ति टू कृष्णा, बट देन व्हाई इट इज कंसिडर्ड राधा कृष्ण डीटी वर्शिप इज टफर देन वर्श डीटी वर्शिप ऑफ जगन्नाथ जी,
राधा कृष्ण वर्शिप इज कंसिडर्ड व्हाट?
इज टफर, इज डिफिकल्ट देन वर्शिप ऑफ
हाँ हाँ
जगन्नाथ।
हाँ तो राधा कृष्ण के विग्रहों की पूजा जगन्नाथ और गौर निताई की पूजा से डिफिकल्ट क्यों मानी गई है? क्योंकि राधा कृष्ण का जो रस है ना, वो परमोच्च माधुर्य रस है, और राधा कृष्ण के पूजा में जो अपराध है वो ग्रहण किए जाते हैं। गौर निताई उसके लिए आए हैं कि वो उसके सेवा में किए हुए अपराध जो है ग्रहण नहीं करते हैं। जगन्नाथ जी भी वैसे ही दयालु हैं, लेकिन तो राधा कृष्ण राधा कृष्ण है, इसलिए हमारे प्रभुपाद जी के इस आंदोलन में राधा कृष्ण के विग्रह भी होंगे, भी लक्ष्मी नारायण के भाव में उनकी सेवा करते हैं, उनको ऐसे हाथ से मुंह में खिलाते नहीं, उनको पूरा सागर संगीत, पूरा उनको मंत्र मंत्र बोल के, लोग घंटी बजाकर ठीक से समय पूरा बिताकर नियम से पंचरात्रि की विधि से करते हैं। तो द्वापर युग में उनकी सेवा जो है वो भाव से करते थे, भाव और प्रेम से करते थे, अभी कलयुग में केवल क्या कहते हैं ऑय एंड रेवरेंस के साथ, ऐश्वर्य के साथ भाव से करते हैं। तो वो राधा रानी का और कृष्ण का चॉइस है, हम वी कैन नॉट क्वेश्चन राधा एंड कृष्ण के ऐसा क्यों है, लेकिन जैसे वो है राधा कृष्ण की सेवा जैसे भी है, उसके सामने आपको ऑप्शन दिया है ना गौर निताई की सेवा करने का, इसलिए प्रभुपाद जी ने सबसे पहले सब लोगों को कहा था कि आप गौर निताई की सेवा शुरू करो पहले, आप उस सेवा में ट्रेंड हो जाएंगे, फिर राधा कृष्ण की सेवा कर सकते हैं आप, वो भी लक्ष्मी नारायण के भाव में। वो उनके द्वारा दिया गया नियम है, हम लोग उसको क्वेश्चन नहीं कर सकते। द वे इट इज दैट्स ऑल, यू ऑट टू बी केयरफुल इन एक्सेप्टिंग। सो इसलिए कभी भी किसी व्यक्ति को अगर घर में ड्यूटी वर्शिप करने की इच्छा हुई, तो पहले हम उनको कहते हैं आप गौर निताई की सेवा करो, फिर उसके बाद में आप जब गुरु जी की आज्ञा हो तो राधा कृष्ण की मूर्ति लाओ। और वैसे ही शालिग्राम और गोवर्धन का भी भेद है, गोवर्धन की पूजा कभी भी कोई नहीं कर सकता जब तक गुरु जी की आज्ञा ना हो, लेकिन शालिग्राम जी गुरु जी दे देते हैं अगर आप पूछेंगे उनकी इच्छा होगी तो, लेकिन उनके आदेश के बिना, वरिष्ठ भक्तों के कृपा के बिना, ये इसमें से कोई भी कार्य हमको नहीं करना चाहिए, तो हमको कहते हैं ना हिंदी में, लेने के देने पड़ जाएंगे, वी विल बी अ लूजर इन स्पाइट ऑफ डूइंग थिंग्स, बिकॉज वी आर डूइंग थिंग्स इन रॉन्ग चैनल, रॉन्ग मैनर। और कोई प्रश्न है? राधेश्याम प्रभु दर्शन दे रहे हैं।
हरे कृष्ण प्रभु, आई एक्चुअली कैन टू थैंक यू प्रभु।
जय
हरे कृष्ण, पिछले 3 दिनों में आपको सुनाई दे रहा है ना प्रभु जी?
यस, अभी सुन अच्छा पढ़ रहे हैं, बहुत अच्छा पढ़ रहे हैं।
पिछले 3 दिन में आपने बहुत अच्छे अच्छे विषयों के संबंध में हम लोगों को सिखाया। पहले दिन मैंने सुना आपके प्रवचन में, इतना आपने जोर दी थी कि राधा राधा जी की कृपा, वृंदावन की कृपा जो है करना ही जीवन का उद्देश्य है। अलग अलग दृष्टिकोण से आपने बताया कि हम भावना क्या होनी चाहिए हमारी, ना दा पिछले नीचे ना करोड़ रुपये से चुनाव, उसको लेकर आपने पहला दिन बहुत अच्छे तरीके से इस विषय के ऊपर बोला आपने कि हम सही भावना को जब तक हम निर्माण नहीं करेंगे हम ब्रज में प्रवेश नहीं कर सकते हैं। और दूसरा दिन आपने अनेक लीलाएं बताया, अद्भुत लीलाएं राधा रानी की और सखियों की और वृंदावन की लीलाएं बताया। और आज के सत्र में आपने बहुत अच्छी तरीके से वापस पुनः आपने इस बात को समझाया कि अनेक लोग इच्छा करते हैं वृंदावन में प्रवेश करने के लिए प्रैक्टिकल रूप में, लेकिन वो नामुमकिन है। और आपने साथ साथ नागा बाबा जी ने बताया सुंदरता, और रघुनाथ दास गोस्वामी की और राधा रानी और कृष्ण कैसे गोस्वामी के साथ लीला की थी, रूप सनातन के साथ तो स्वीट ड्रेस लेके आई थी, तो ऐसे लीला भी किया भी है उन्होंने, लेकिन हम लोग उसमें अचानक प्रवेश नहीं कर पाएंगे योग्यता के बिना। और वृंदावन में रहना कितना उसके लिए तपस्या करना होता है, लोग बहुत सस्ता लेते हैं, सस्ता नहीं लेना चाहिए। तो 3 दिन में हम लोगों को आपने बहुत कुछ विषय सिखा दिया है आपने, मुझे तो लग रहा है कि इसको लेकर आपने जो दिया है वेद वाक्य जैसा है, क्योंकि आप अनेक साल ब्रजवासियों के संग में, गुरु महाराज के संग में रहकर आपने इस तरह की साक्षात्कार प्राप्त की है और आप परम भाग्यशाली हैं। क्योंकि अगर कोई डेटी रूम के अंदर जाकर आता है बाहर तो उसके शरीर से चंदन का इसी तरह आप अपने संग के कारण का सुगंध आप में लग रहा है, तो हम आपके साथ संग करके हम भी थोड़ा सुगंध पाएंगे आपसे। जब आपने राधा रानी के संबंध में बोला मुझे तुरंत याद आया, मैं रोज अनार खाता हूँ, लेकिन पर अनार जो है वो राधा रानी शुक तोता को खिलाती है।
हाँ
मैंने सुना था हरे कृष्ण बुलवाती है और खिलाती है उनको, इसलिए मैं खाते समय उसको सोचता था, लेकिन आज और एक बार बात पता चला मुझे कि राधा रानी भी पसंद करती है अनार।
यस, चिक्कू पसंद करती, चिक्कू भी पसंद।
हाँ चिक्कू और
अरबी सब्जी,
अरबी सब्जी भी बोला आपने। आपने अनेक, और उनके ब्लाउज पिंक कलर है आपने बोला, तो ऐसे अनेक चीज हमको बताकर आपने उनकी स्मरण बढ़ाया है। और आप
और नीला कुर्ता बताया था ना, आज नीला कुर्ता पहना है, राधा रानी का प्रिय वस्त्र पहना है।
तो आपके संग से हम जरूर कुछ आगे कदम हम बढ़ा पाएंगे अपने भक्ति मार्ग में, अपने ब्रज भक्ति में। और हर साल आप आकर पुनः के भक्तों के ऊपर कृपा की है, आपको कोटि कोटि दंडवत प्रणाम और धन्यवाद प्रभु जी, और इस तरह आपकी कृपा बरसाते रहिए। आप
एक बात रह गई है छोटी सी, आज विशाखा देवी का भी जन्मदिन है, और विशाखा देवी उनका सेवा जो है ना, विशेष सेवा, उनका जन्म राधाष्टमी का ही है, उनका स्टार जैसा वस्त्र है उनका, और उनका वस्त्र भी स्टार जैसा है, और उनका अंग कांति भी स्टार जैसा है, तारों जैसा है, तारावली। और प्रिया प्रीतम को वस्त्र पहनाने की सेवा जो है ना, ड्रेसिंग श्रृंगार, उनकी विशेष सेवा है। और एक सेवा है वो विशाखा देवी सुगंधित द्रव्य ना, इत्र, इत्र की सेवा वो बहुत सुंदर करती है, प्रिया प्रीतम को वो अलग अलग सीजन के अनुसार इत्र लगाती है। तो 3 उनकी मंजरियां हैं, मधुमति मंजरी, रस मंजरी और गुण मंजरी। गुण मंजरी गोपाल भट्ट गोस्वामी है, और रस मंजरी रघुनाथ दास गोस्वामी है, और मधुमति मंजरी शायद मधु पंडित है मेरे विचार से। और ये हास परिहास करने में बहुत कुशल है, और विद्वान पिता की पुत्री होने से पूर्ण विदुषी है, इसके इसका जो सलाह है ना कभी वेस्ट जाता नहीं, शी इज वेरी एक्सपर्ट एडवाइजर। और राधा कृष्ण के वस्त्रों को जैसे आप लोग है ना डीटी में कैसे मेंटेन करते हो, अच्छा हैंगर लगाते हो, उसको पॉलिश करते हो, साफ रखते हो, मेंटेन करते हो, इस्त्री करते हो, वैसे ही वो सेवा विशाखा देवी की सेवा है। विशाखा देवी के नेतृत्व में कृष्ण के वस्त्रों की सुरक्षा और देखभाल होती है, और वृंदा देवी को यह आदेश देती है, और पुष्पलता वेली वृक्षावली के साथ वो कृष्ण की सेवा करती है। और आज का जन्म जो है वो चंपकलता देवी का भी है। विशाखा देवी का जो गांव है वो अंजनों के, अंजन बिहारी, यहाँ पर मैंने बताया था ना वो लीला, काजल की लीला, वो गांव विशाखा देवी का। और चंपकलता का गांव जो है वो चंपकलता का गांव जो है तो मैं अभी याद आएगा बताऊंगा आपको, बरसाने के पास ही है बहुत वो। और चंपकलता देवी जो है वो सबसे बेस्ट कुक जो है राधा रानी, उसके बाद नंबर 2 की बेस्ट कुक चंपकलता देवी, रसोई बनाना उसका विशेष विशेष सेवा है। और कृष्ण भगवान बहुत पसंद करते हैं उसका भोजन राधा रानी के बाद में। और चंपकलता का विशेषता यह है कि वो मट्टी के बर्तन बनाने में बहुत कुशल है, बहुत ही डेकोरेटिव डिजाइन के साथ, विशेष आकार के, विशेष वॉल्यूम के, कुकिंग के लिए और परोसने के लिए बहुत बहुत सुंदर मट्टी के व्यंजन बनाती है। और उसका नाम पता नहीं, गाँव का नाम क्यों नहीं याद आ रहा मुझे, आएगा भाई बाद में। बहुत ही पास में है, बसाने से बहुत 3-4 किलोमीटर आगे है उसका नाम, चंपकलता का गांव। एनीवेज कोई बात नहीं, तो ऐसे चंपकलता देवी हमारे किचन में, मैं हमेशा बताता हूँ कि जब भी माताएं किचन में खाना बनाती है या हम लोग मंदिर में खाना बनाते हैं भगवान के लिए किचन में, तो वो किचन में हमको प्रवेश करते समय यशोदा देवी, नहीं, एक अपन गलत नहीं करे, चलो आगे। तो किचन में जाने के पहले यशोदा देवी और राधा रानी और चंपकलता, इन तीनों को हमको प्रणाम करना चाहिए, और इन तीनों के ही निर्देश में हम लोग रसोई बनाने के भाव में प्रवेश करना चाहिए। ये यशोदा, राधा रानी और चंपकलता, इनका किचन है जो कृष्ण की सेवा में है, मैं सेविका हूँ या सेवक हूँ, इस भाव से किचन में हमको प्रवेश करना चाहिए। कभी कभी मैं बताता हूँ कि आप किचन में क्या रखो, यशोदा, राधा रानी, चंपकलता, तो ये कम से कम नाम देख के आपको याद आएगा तो भाव आपका बनेगा भोजन बनाने के पहले। तो ये चंपकलता बहुत प्रिय है राधा रानी को और कृष्ण को, और अष्टसखियों में से जो ललिता है उसके बाजू में चंपकलता खड़ी रहती है। ललिता और चंपकलता बाजू बाजू में है, इधर विशाखा और इंदुलेखा एक दूसरे के बाजू में खड़े हैं। राधा रानी के बाएं अंग में विशाखा और इंदुलेखा, और कृष्ण के दाएं अंग में ललिता और चंपकलता देवी। हरे कृष्णा प्रभु जी, बहुत बहुत धन्यवाद। इतना थोड़ा सा कहकर मैं आपको सबको बहुत हार्दिक धन्यवाद देता हूँ, क्योंकि सबसे ज्यादा लाभ इसमें मुझे है, क्योंकि इसको कथा को पढ़ने में, तैयारी करने में जो आनंद और शुद्धिकरण प्राप्त होता है वो बहुत ही कथा कहने वाले के लिए बहुत ही भाग्य की बात है। आपने वो भाग्य मुझे प्रदान प्रदान किया, जैसे भूखे व्यक्ति को आपने पूरा लंच खिलाया, उसी प्रकार का अनुभव मुझे हो रहा है। मेरी जो तृष्णा थी ये सब बातों को करने की, उसने आपको, आपने उसके लिए अच्छी पृष्ठभूमि को तैयार किया, मुझे मौका दिया, इसलिए मैं आपका बहुत बहुत ऋणी हूँ। आगे भी भविष्य में ये सेवा करने का मैं अभिलाषा करता हूँ, और आप सबको राधाष्टमी की बहुत बहुत दिल से शुभकामना देता हूँ, और सच्चे रूप से, सच्चे मार्ग से, सच्चे तरीके से आपको राधा रानी की कृपा प्राप्त हो जाए, यही मैं आपके लिए प्रार्थना करता हूँ। हरे कृष्णा, इज दैट ओके? आई विल एंड, थैंक यू वेरी मच।
थैंक यू।